الحباب كل بهار جيا جيا راتا माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदान यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी राधा माधव बिहारी गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन जगदन रंजन यशोदान जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव वल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर I'm not a bad guy.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
శ్యామ సుందర జయ జగన్నాథ జగన్నాథ బలదేవ జయ సుభద్రా జయ జగన్నాథ జగన్నాథ స్వామి నయన పథగామి నయన పథగామి భవ జగన్నాథ స్వామి నయన పథ జయ ప్రహ్లాద సింహ జయ ప్రహ్లాద సింహ ప్రహ్లాద సింహ జయ ప్రహ్లాద సింహ జయ ప్రహ్లాద సింహ జయ గౌరానితాయ 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 జయ గౌరానితాయ ప్రభుపాద ప్రభుపాద జయ జయ ప్రభుపాద నీతా గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ హరి
బోల్ జయ ఓం విష్ణుపాద పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య అష్టోత్తర శతాశ్రీ శ్రీమద్ కృష్ణ కృపా శ్రీమతి వై చరణ అరవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద కీ జయ. ఇస్కాన్ ప్రతిష్టాతాచార్య బిబిటి ప్రతిష్టాతాచార్య డివైన్ గ్రేస్ శ్రీల ప్రభుపాద కీ జయ. అనంత కోటి వైష్ణవ భక్తవృంద కీ జయ. నామాచార్య శ్రీల హరిదాస్ ఠాకుర్ కీ జయ. ప్రేమ శేఖ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ ద్వైత గదాధర శివసాది గౌరవభక్తవృంద కీ జయ. రాధాకృష్ణ గోపీనాథ రాధాకుండ శ్యామకుండ గిరి గోవర్ధన్ కి జయ. మథురా వృందావన్ ధామ్ కి జయ. నవదీప్ మాయాపుర ధామ్ కి జయ. శ్రీక్షేత్ర పురుషోత్తమ క్షేత్ర జగన్నాథ పురి ధామ్ కి జయ. జగన్నాథ బలదేవ సుభద్రా మహారాణి కి జయ. శ్రీ శ్రీ రాధా గిరిధారి భగవాన్ కి జయ. శ్రీ శ్రీ గౌర్నితాయ కి జయ. ఇస్కాన్ మిరారోడ్ కి జయ. శ్రీ నృసింహ చతుర్దశి వ్రత కి జయ. ప్రహ్లాద్ నృసింహ భగవాన్ కి జయ. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతం కి జయ. వృందాదేవి తులసి మహారాణి కి జయ. సమవేత వైష్ణవ భక్తవృంద కీ జయ. ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబ్లీ డివోటీస్. ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబ్లీ డివోటీస్. ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబ్లీ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమః భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమః భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయే నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతే ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికే. శ్రీమద్ భాగవతం సే పాఠ సప్తమ స్కంద్ అథమ అధ్యాయ శ్లోక్ నంబర్ శ్లోక్ సంఖ్య 17. ఇంకా ఆది నృసింహదేవ్ కి ఆవిర్భావ్ నృసింహదేవ్ కి ఆవిర్భావ్ కి బారే క్లాస్ హోగా ఇస్లియే ఈ సప్తమ స్కంద్ జో శ్లోక్ లీ గయి హై. సత్యం విధాతుం నిజభృత్యభాషితం వ్యాప్తిం చ భూతేషు అఖిలేషు च आत्मनः अदृश्यत अति अद्भुत रूपं उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यता अद्भुतरूपम् उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेषु चखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात् अद्भुतरूपम् उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात् अद्भुतरूपम् उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितम् व्याप्ति च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात् अति अद्भुतरूपम् उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितम् व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात् अति अद्भुतरूपम् उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम् सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितम् व्याप्तिं च भूतेषु चखिलेषु आत्मनः अदृश्यता तति अद्भुतरूपम् उद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम् मापे
Yeah.
हरे कृष्ण। सत्यम सच विधातुम सिद्ध करने के लिए निज भृत्य भाषितम अपने दास के ही शब्द को प्रह्लाद महाराज द्वारा कहे गए शब्द कि भगवान सर्वव्यापी है, व्याप्तिम उपस्थिति च तथा भूतेषु जीवों तथा तत्वों के मध्य अखिलेषु समस्त च तथा आत्मनः अपना अदृश्यता दिखाई पड़ा अति अत्यंत अद्भुत अद्भुत रूपम रूप की उद्वहन धारण करके स्तंभे खंभे में सभायाम सभा के भीतर न नहीं मृगम पशु न न तो मानुषम मनुष्य। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद अपने दास प्रह्लाद महाराज के वचन को सिद्ध करने के लिए कि वे सत्य है, अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि परमेश्वर सर्वत्र उपस्थित है, यहां तक कि सभा भवन के खंभे के भीतर भी है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि ने अपना अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किया। यह रूप न तो मनुष्य का था न सिंह का। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। तात्पर्य जब हिरण्यकशिपु ने प्रह्लाद महाराज से पूछा कहां तुम्हारा भगवान है, क्या वह इस खंभे में उपस्थित है, तो प्रह्लाद महाराज ने निर्भीक होकर उत्तर दिया हां मेरे भगवान सर्वत्र उपस्थित है। अतः हिरण्यकशिपु को यह विश्वास दिलाने के लिए कि प्रह्लाद महाराज का कथन अकाट्य रूप से सत्य था, भगवान उस खंभे से प्रकट हो गए। वे आधा सिंह तथा आधा मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, जिससे हिरण्यकशिपु यह नहीं जान पाया कि यह विराट दैव सिंह है या मनुष्य। प्रह्लाद के कथन की पुष्टि करके भगवान ने सिद्ध कर दिया कि उनका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है कौन्तेय प्रतिजाना ही न मे भक्त्या प्रणश्यति। यद्यपि प्रह्लाद का असुर पिता उन्हें मार डालने की बार बार धमकियां दे चुका था, किंतु प्रह्लाद को विश्वास था कि वे मारे नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी रक्षा करने वाले परमेश्वर है। खंभे से प्रकट होकर भगवान ने मानो यह कहते हुए अपने भक्त को प्रोत्साहित किया कि मत चिंतित हो, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। नृसिंहदेव के रूप में प्रकट होकर भगवान ने ब्रह्मा जी के वचन को भी रख लिया कि हिरण्यकशिपु का वध न तो किसी पशु के द्वारा होगा न मनुष्य के द्वारा। भगवान ऐसे रूप में प्रकट हुए जो न तो पूरी तरह मनुष्य का न सिंह का कहा जा सकता था। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखानितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः जत्पाद पल्लव जुगं विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समये सह गणाधिराज विज्ञान विहंतु ममस्य जगत्रयस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री नृसिंह जय नृसिंह जय 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 श्री नृसिंह उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्त सर्वतो मुखम् नृसिंहभीषणं भद्रम् मृत्युर्मृत्युर्नमाम्यहम् श्री नृसिंह जय नृसिंह जय 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 श्री नृसिंह प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग तब कर कमल बरे नखा अभूत सिंह दलित हिरण्यकशिपु कानुभृंग केशवधीत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तब कर कमल बरे नखा अद्भुत सिंह दलित हिरण्यकशिपु कानुभृंग जय केशवधीत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जय प्रह्लाद सिंह जय प्रह्लाद सिंह प्रह्लाद सिंह जय प्रह्लाद सिंह जय प्रह्लाद सिंह भगवान की। तो भी हम जो श्लोक गा रहे थे कौन सा श्री नृसिंह जय नृसिंह जय 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 श्री नृसिंह उग्र वीरंग महाविष्णु। ये श्लोक कौन कौन गाया इसको सबसे पहले? श्लोक कहाँ से है? चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने वो श्लोक गाते। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद आह्लाद राय ने हिरण्य कश्यप वत्स प्रह्लाद मान जो प्रत्येक दिन महाप्रभु ने आते थे जगन्नाथ दर्शन के लिए। अभी मुक्ति मंडप के साइड में वो ओरिजिनल मूल सिंह नृसिंह मूर्ति वहां पर है। मुक्ति मंडप के ठीक बाजू में एक छोटा नृसिंह टेम्पल है, उसमें भगवान नृसिंहदेव की मूर्ति है। महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन के पहले वहां पर नृसिंहदेव को एक नमस्ते नरसिंह है ये वंदना गाते जाते थे। लेकिन जो श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह ये स्कंद पुराण में है कि जब ब्रह्मा जी ने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को रत्न वेदी पर अधिष्ठित किए प्रतिष्ठित करके बैठा है और महाराज इंद्रदेव को बोले कि जाकर दर्शन करो। किनको? जगन्नाथ जी को। जब इंद्रदेव ने अकेले गए दर्शन करने के लिए किस रूप में देखे? उग्र नृसिंह में रूप में बैठे हुए थे। कौन? जगन्नाथ। अरे अद्भुत उग्र नृसिंह गर्जना कर भीषण का है। तेज इतनी था कि कोड़ो सूर्य के समान तेज आंख में देखना संभव नहीं था। भयभीत होकर महाराज इंद्रदेव ने वापस आ गए। हो आके फिर बोले क्या करूं, कहां मुझे भेजती है दर्शन करने? ये सब कुछ खा के ना सब कुछ तीनों लोग को ध्वंस कर देंगे ऐसे लग रहा है, इतनी उग्र मूर्ति है। तो फिर ब्रह्मा जी ने स्वयं गए हैं, स्वयं जाकर भगवान को शांति की। तो ये स्तुति ब्रह्मा जी ने गाए थे उग्र नृसिंह मूर्ति को। बाद जो जगन्नाथ जी ने स्वयं उग्र नृसिंह के रूप में प्रकट होकर दर्शन दे रहे थे तो शांत कराने के लिए, तो उग्र नृसिंह को शांत करने के लिए स्तुति होता है। तो इसलिए उसी स्तुति उन्होंने ब्रह्मा जी ने फिर उसी मंत्र में इनको दीक्षित कर दिया महाराज इंद्रदेवन को और इनको कहे कि इस मंत्र की इस मंत्र में प्रत्येक दिन स्तुति करना। किनको? श्री जगन्नाथ जी को। ये जगन्नाथ जी भी नृसिंह है, ये सबसे पहले नृसिंह रूप में दर्शन दिए इनको महाराज इंद्रदेवन को। इसी प्रकार जब गौरांग महाप्रभु भी सबसे पहले अपने भगवत्ता का परिचय देना चाहते थे शिवासंगन में, सबसे पहले शिवास ठाकुर भयभीत होकर उनके पड़ोस लोग ने उनको धमकी दिए थे कि तुम्हारे घर बार तोड़ के सब फेंक देंगे, हमें काजी को खबर दे दिए हैं, आके तुम्हारे चारों भाई को अरेस्ट करके ले जाएगा, तुम्हारे घर बार फेंक के सब गंगा में फेंक देंगे। तो उन्होंने भी एक दिन भयभीत होकर अपने घर में बैठकर जो डेटी रूम में बैठकर अकेले अकेले बैठकर नृसिंहदेव को भक्त विघ्न नाश के लिए ध्यान कर रहे थे और गौरांग महाप्रभु गए और सीधे वो दर्जे के बंद के थे, दर्जे के ऊपर बहुत जोर से लात लगाए कि अरे शिवासिया अभी तक तो मुझे पहचाना नहीं, कहा रे पुजिस करिस कार ध्यान, जहां रे पुजिस देख सही विद्यमान। किसको पूजा करता है, किसको ध्यान करता है, अभी देख किसको ध्यान करता है, किसको पूजा करता है, मैं कौन हूं। सीधे गए और विष्णु खट जो विष्णु सिंहासन में सारे सालग्राम को उठाकर स्वयं बैठ गए। किस रूप में प्रकट हुए सबसे पहले? वो सब नृसिंह मूर्ति है, चार भुज शंख चक्र ग्रह पद्म धारण नृसिंह मूर्ति में नृसिंहदेव के रूप में शिवास ठाकुर को दर्शन दिए। कौन? गौरांग महाप्रभु। इसलिए ये जगन्नाथ भी नृसिंह है अरे गौरांग महाप्रभु भी ये भी नृसिंह है। नृसिंहदेव के रूप में शिवास ठाकुर को दर्शन देकर उनके सारे भय को नष्ट किए हैं। देख मैं कौन हूं, किसको डरता है, ये काजी क्या कर लेगा, मैं स्वयं जब उसके हृदय में बैठा हूं तो इसको प्रेरणा नहीं दूंगा, यहां तक कैसे आएगा, मुझे विश्वास नहीं। इस प्रकार गौरांग महाप्रभु भी स्वयं नृसिंहदेव रूप में प्रकट हुए और जगन्नाथ के नृसिंह है, नृसिंहदेव तो नृसिंह ही है। एक नृसिंहदेव नृसिंहानंद ब्रह्मचारी था, वो तीनों को भोग लगा रहा था, किसको? गौरांग महाप्रभु और जगन्नाथ और नृसिंहदेव। ध्यान में नृसिंह जब तीनों को ध्यान लगाया, मंत्र पढ़ के पानी चढ़ा दिया तो महाप्रभु ने आए, पहले खाए अपना प्लेट से खा ली, उसके बाद जगन्नाथ के प्लेट से भी खा दिया। बड़ा खुश हो रहा था नृसिंहानंद ब्रह्मचर्य, जय गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, ठीक है जगन्नाथ का मैंने अभी प्रमाण हो गया, हाँ भी हम अपने प्लेट से फिर जगन्नाथ की प्लेट से बाद में जाकर नृसिंहदेव की प्लेट से भी खाने लगे। वो चिल्लाने लगे अरे नृसिंहदेव मेरे आराध्य देव है, चलो जगन्नाथ का आप खा लिया अपना खा लिया जगन्नाथ आप तो दोनों एक ही है, लेकिन नृसिंहदेव का प्लेट से भी क्यों खाया। अर्थात महाप्रभु ने प्रमाण किया मैं भी नृसिंह हूं, कोई भिन्नता नहीं है। इसलिए आज नृसिंहदेव के आविर्भाव है। आविर्भाव प्रकृति में पता नहीं कैसे आज के दिन हम आविर्भाव मनाते हैं, आज कौन सा तिथि है, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी है, वैशाख महीना के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कहते कि यही शास्त्र के प्रमाण है कि आज के दिन भगवान ने आविर्भाव हुए थे। लेकिन पद्म पुराण की कथन है कि बाद नृसिंह पुराण से भी ये कहा जाता है कि हिरण्यकशिपु को यह भी वरदान था कि 12 महीने में किसी महीना में मरेगा नहीं है, 12 महीने से भी वो भी बहुत बुद्धिमान था, बोला था कि 12 महीने में 6 ऋतु और 12 महीने इसमें से भी किसी दिन किसी भी महीने में नहीं मरेगा, दिन में नहीं कि रात में नहीं है, जल स्थल आकाश कहीं भी मृत्यु नहीं होगा। तो भागवत में से वर्णन है, लेकिन 12 महीने में भी किसी महीने में मरेगा नहीं, तो ये तो एक महीना चल रहा है ना, कौन सा महीना, वैशाख महीना चल रहा, तो फिर कैसे मरा। तो इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं प्रकृति में अधिक मास में मारा था, कौन सा मास में, अधिक महीना, पुरुषोत्तम मास, इसलिए 12 महीने में नहीं मरेगा बोला था, इसलिए भगवान ने इसको पुरुषोत्तम मास में मारे थे। नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं पुरुषोत्तम मास वो वैशाख महीना के साथ में जोड़वा आया था, पुरुषोत्तम मास जो वैशाख महीना था उसी के साथ ही आया, कौन सा महीना, पुरुषोत्तम मास, इसलिए वैशाख शुक्ल चतुर्दशी कहना ये गलत नहीं है, वो दोनों ही एक साथ आए थे, पुरुषोत्तम मास उसी के साथ में जुड़ा हुआ है, पुरुष ये वैशाख शुक्ल का वैशाख शुक्ल का चतुर्दशी तिथि भी था, इसलिए वैशाख शुक्ल चतुर्दशी भी कोई कहते तो गलत नहीं, उसी दिन नृसिंहदेव के आविर्भाव मनाते हैं। लेकिन आज का दिन जैसे यहाँ पर अब ये श्लोक अभी आलोचना करेंगे थोड़े पहले, लेकिन बात में थोड़ा, लेकिन ये जो आविर्भाव जो मना रहे नृसिंहदेव का तो ये हिरण्यकशिपु के लिए जो प्रकट हुए थे खंभे से उसी के लिए मना रहे कि, तो इसके पहले भी ये व्रत रखा मैंने लोग पालन करते थे ना, ही से प्रारंभ हुआ, पद्म प्राण कहते कि इसके पहले से ही था ये व्रत, ये नृसिंहदेव जो प्रकट होकर खंभे से हिरण्यकशिपु को विदारण किए इसके पहले भी ये नृसिंह चतुर्दशी व्रत लोग पालन करते थे, ये अनादिकाल से सृष्टि के प्रारंभ से था नृसिंह चतुर्दशी की व्रत। तो वहां से उन्होंने कहानी कहते कि पद्म पुराण में कि वो मुल्तान ने सिंधु नदी के किनारे मुल्तान प्रदेश था और वहां पर एक ऋषि रहते थे, उनके नाम था हरित ऋषि, उनकी पत्नी थी पद्मावती, जिस प्रकार सुतपा पुष्णि भी कठोर तपस्या किया थे भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए, कृष्ण उनके 3 बार पुत्र बनकर आए थे, सुतपा पुष्णि के से पुष्णि गर्भ, फिर वसुदेव देवकी से कृष्ण, बीच में कौन से बामन देव आए थे कश्यप अदिति से, इसी प्रकार ये भी भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या किए थे हरित मुनि और पद्मावती, सिंधु नदी के किनारे मुल्तान प्रदेश अभी पाकिस्तान में, तो कठोर तपस्या करके 10,000 साल तक तपस्या किए, केवल सूखे घास पत्ते खाए, तो फिर भगवान ने प्रसन्न होकर प्रकट हुए भगवान नारायण, तभी उन्होंने इनकी इच्छा को समझ गए कि ये तो मुख्य भी नहीं चाहते, मुझे पुत्र रूप में चाहते, लेकिन ये नृसिंहदेव को पुत्र था, तो नृसिंहदेव ने इसलिए कहे कि मैं तो हे माता जी पद्मावती मैं आपकी गर्भ में प्रवेश नहीं करूंगा, लेकिन अब आप जैसे कह रहे हो इच्छा तुम्हारे मुझे पुत्र रूप में लालन पालन करने की, मैं अभी बाल नृसिंह रूप धारण करके तुम्हारी गोद में आ जाता हूं। तो भगवान ने बाल नृसिंह रूप धारण करके माता पद्मावती की गोद में आ गए। वहां पर पद्मपुराण कहा तो इसी जो जिस दिन ये बाल नृसिंह मूर्ति धारण करके उन्होंने मां पद्मावती की गोद में आए थे, हरित मुनि और पद्मावती उनको लालन को बड़े पालन किए भगवान नृसिंहदेव को बाल रूप में, जो इस छवि को देखते हुए कि भगवान नृसिंहदेव अपने मां की गोद में बैठे हुए हैं बाल नृसिंह, तो उनको जो पूजा करता है ध्यान करता है उसके सभी प्रकार की बाधा विघ्न नष्ट हो जाते हैं। तो पद्मपुराणी कहने का है कि आज के दिन प्रकृति में वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तिथि ये जो नृसिंह चतुर्दशी के व्रत ये अनादिकाल से चले आ रहा था, ये उसी दिन नृसिंह चतुर्दशी व्रत के दिन वैशाख शुक्ल चतुर्दशी की तिथि में भगवान नृसिंह ने बाल नृसिंह रूप धारण करके माता पद्मावती के गोद में आए थे, इसलिए हम नृसिंह चतुर्दशी व्रत पालन करते हैं। लेकिन भागवत के जैसे हम आज के श्लोक आलोचन करने वाले हैं कि भगवान ने कैसे खंभे से क्यों प्रकट हुए हैं, फिर भी हम जानते हैं साधारण लोग भी हम जानते हैं कि क्या भगवान ने आज नृसिंह चतुर्दशी मना रहे, क्योंकि खंभे से भगवान प्रकट होकर किसको विदारण कर दिए थे, हिरण्यकश्यप को विदारण किए थे। ये भी क्योंकि इस सप्तम स्कंद में भगवान विशेष रूप में भागवत में चर्चा की जाती भगवान किस प्रकार अपने भक्तों को पोषण करते हैं, कैसे भक्त अपने भगवान पोषण करते हैं भक्तों को। अतः स्वर्ग विसर्गस्य पोषण स्थानमुतय मनंतर ईशानु कथा निरोध मुक्तिराश्रय, भगवान कैसे पोषण करते, प्रहलाद कैसे पोषण किया अपने भक्तों को। श्रीधर स्वामी जब इस स्कंद के प्रारंभ करते हैं, सप्तम स्कंद की अपने टीका लिखना प्रारंभ करते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले प्रणाम करते किनको, सिंहदेव को। सो भक्त पक्षपातेन तद विपक्ष विदारणम नृसिंहं नृसिंहं विषणं वंदे परमानंद विग्रहं, ऐसे ऐसे प्रणाम करते, सबसे पहले नृसिंहदेव को प्रणाम करते हैं। क्योंकि श्रीधर स्वामी भी जो टीका लिखे हैं भागवत के सारे, वो इन्हीं की कृपा से, किनकी कृपा से, नृसिंहदेव की कृपा से हैं। तो कहा जाता है कि नृसिंह प्रसाद, ये नृसिंह के प्रसाद से ही ये भागवत की कृपा क्या सारे लिखे हैं। ये नृसिंह के उपासक थे, श्रीधर स्वामी स्वयं नृसिंहदेव की पूजा करते थे बचपन से ही, नृसिंह मंत्र से ही वो दीक्षित थे, नृसिंहदेव की पूजा करते थे। इसलिए कहते कि भागवत की ज्ञानता कौन है, ब्रह्मा व्यति शुक व्यति और व्यास व्यति व अनव्यति नृसिंह कृपात, नृसिंह कृपा से श्रीधर स्वामी व्यति, श्रीधर स्वामी की पूरी भागवत। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि श्रीधर स्वामी को गुरु करी माने। बल्लभाचार्य जब आपने टीका लेकर गए सुभद्रा टीका महाप्रभु को सुनाने के लिए, और उन्होंने कहते थे कि मैं श्रीधर स्वामी से भी अच्छा टीका लिखा, तो महाप्रभु बोले ब्रह्मंडी है, तुम्हारा टीका मैं सुनने वाला नहीं, तुम जाओ यहां से, श्रीधर स्वामी को मैं गुरु रूप में मानता हूं। श्रीधर स्वामी जो कि नृसिंहदेव के प्रसाद में सबसे श्रेष्ठ भागवत की सबसे महान टीका को रचना की है, जिनको भगवान ने स्वयं इनके माध्यम से लिखा है। इसलिए जो भी टीकाकार बात में आए हैं, जो कि श्रीधर स्वामी की टीका से यदि उनकी कुछ उन्मुख है, इसको स्वीकार नहीं किया जाता वैष्णव समाज में। इसलिए श्रीधर स्वामी ये सप्तम स्कंद की टीका लिखने के प्रारंभ से सबसे पहले नृसिंहदेव को वंदना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके प्रारंभ करते हैं। तो अभी आपको पता है कि भाई ये हिरण्यकश्यप ने प्रसंग तो पूरा 10 अध्याय में वर्णन है, पहला सप्तम स्कंद की पहला अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक ये चलता रहेगा प्रहलाद और नृसिंह चरित्र। लेकिन आप सब जानते हैं कि नृसिंह हिरण्यकश्यप की वध हो गया, उसका छोटा भाई हिरण्यकश्यप की छोटा भाई कौन था, हिरण्यकश्यप की जो वध हो गया कौन वध किया, वराह रूप में भगवान ने वध किया। लेकिन आचार्य लोगों ने कहा था कि भगवान इसे अवतार क्यों लेते हैं, किस लिए अवतार भगवान लेते हैं, आपको पता है गीता के अनुजाई क्या क्या कारण है भगवान को अवतार लेने में, भगवान क्यों अवतार लेते हैं, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, साधुओं को रक्षा करना और दुष्टों को विनाश करना, ये यही कारण हम सोचते हैं, और धर्म को संस्थापन करना। लेकिन ये कुछ आचार्य लोगों की मत है कि ये बहिरंग कारण है, जैसे चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होने का जो बहिरंग कारण क्या है, संकेत नाम युग धर्म को प्रवर्तन करना, ये सब मैंने, लेकिन उसके अंतरंग कारण में जैसे गौरांग महाप्रभु आविर्भाव होते हैं, अंतरंग कारण भी है, राधारानी के भाव को आस्वादन करना है, राधाया प्रणया माधुरी किद्री सेवा नईवा सूक्ष्म मदनुभवत किदृशम मदीय आदि, मैंने चैतन्य महाप्रभु इसलिए आए थे कि राधारानी के भाव को अंगीकार करके राधारानी के प्रेम को आस्वादन करने के लिए है? तो इस प्रकार ये जो अन्य भी भगवान ने जो अवतार आते हैं, आचार्य लोग कहते हैं इनकी भी एक अंतरंग कारण होता है, किस लिए आते हैं भगवान। जैसे भगवान विष्णु ने नृसिंह सबसे जो नृसिंह रूप में प्रकट हुए, उनका भी अंतरंग कारण है, किस लिए आए ये, किस लिए इस रूप में प्रकट हुए। बहिरंग कारण तो आए कि बस दुष्ट को राखा हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु राक्षस को विदारण करके मैंने बस दुष्टों को विनाश किया, हमको इसे बाहर दिखाई पड़ रहा है कि दुष्टों को विनाश किए और संत को पालन किए, प्रहलाद जैसे साधु को आश्वासन दिए, उसकी रक्षा की, और अपने वचन को गीता में जो वचन कहे थे कि मत ने कौनते प्रति जाना ही नमय भक्त्या प्रणश्यति, इसको सफल प्रति पर मैं इसको विश्वास दिलाने के लिए सभी को। लेकिन जैसे हमारे पास में जो भी सब गुण दिखाई पड़ता है सूक्ष्म रूप से, ये सब किसके पास दिखाई पड़ता है? भगवान के पास भी दिखाई पड़ता है, है? हमारे मन में कभी कभी कुश्ती कसरत, सबसे में एक कमरे में बैठना अच्छा नहीं लगता, कभी कभी कुश्ती कसरत करने की इच्छा होती है, फाइटिंग करने की इच्छा होती है, कभी खेलने कूदने की इच्छा होती है, ये सारी इच्छा भगवान के पास है, है? तो भगवान ने कभी कभी वैकुंठ में बैठ तो उनको भी इच्छा होता है कभी कभी किससे युद्ध करना, फाइटिंग करना है थोड़ा सा, लेकिन वो ये बद्ध संसार में, ये दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो समकक्ष होकर भगवान के साथ में, जब कोई किसके साथ कुश्ती करे उसका समकक्ष होना चाहिए ना, ऐसा कैसा करेगा? भौतिक जगत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, इसलिए भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसकी व्यवस्था करती है, जोगमाया शक्ति है, इसलिए जोगमाया शक्ति ने व्यवस्था कर दी कि दो जय विजय जो द्वारपाल थे दो वैकुंठ के दर्जे पर, ये दोनों को चुनी, क्योंकि यही दोनों ठीक है, तगड़े हैं, किसके साथ युद्ध कर सकेंगे? भगवान की जो इच्छा है वीर रस को आस्वादन करना है, वीर रस को आस्वादन करने के लिए है। भगवान ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रेयः ज्ञान वैराग्यम शरण भगव, ये भगवान के छह गुण है। इसलिए भगवान को कभी अपने वीर जीवा शक्ति का भी थोड़ा आस्वादन, माने बल का युद्ध करने की इच्छा होती है किसके साथ, तभी जोगमाया के द्वारा ये घटना सारे संगठित हुआ कि इन्होंने चारों कुमार के द्वारा अभिशाप दिला दी किसको? जय विजय, जय विजय ये दोनों ही भक्त हैं, इसमें कौन सा भक्त नहीं है? ये जो लड़ा आप देखेंगे सभी भक्त हैं, हिरण्यकशिपु तो भक्त है, हिरण्यकशिपु भक्त है, राक्षस तो दिखाई पड़ता लेकिन है वो जय, जब आगे देखेंगे प्रहलाद का स्तुति सब लोग स्तुति करेंगे, जब विष्णु दूतों की स्तुति बारे आएगा तो विष्णु दूत ने कहेंगे कि आप इसको बद्ध करके बहुत इनके कल्याण किया, क्योंकि ये तो आपके माने वैकुंठ के दर्जे पर जय ही था। तो इसलिए भगवान ने केवल वीर रस को आस्वादन करने के लिए है, अंतरंग कारण ये है। ये दो अवतार विशेष में प्रकट हुए, कौन सा? वराह अवतार और नृसिंह अवतार, अपने वीर रस को आस्वादन करना चाहते थे, तो इसके लिए जोगमाया देवी ने ये सब घटना को सब संगठित की कि ये जय विदय अभिशाप प्राप्त हुए, फिर ये धरा पर आए, राक्षस बने, है तीन जन्म पहले पद्म प्राण कर दिया, सात जन्म के लिए कहा राक्षस बनना था, लेकिन भगवान ने आकर इसको उनको दिए चुनौती दिए कि आप यदि मेरी भक्तवन के ही साथ नहीं भक्तवन की रहना चाहते हो, क्योंकि इनके मन में पहले इच्छा था कि हम यदि भी गिर जाएं भौतिक जगत में तो फिर भक्त गृह जनी जन्म है वो मर, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का, यही यदि मैं मेरे का निज कर्म दोषो गुणे जे जे जन्म पाई, मैं अपने कर्म दोष गुण में जैसे ही जन्म हो लेकिन भक्त घर में जैसे जन्म मिले, ये भक्तों की इच्छा रहा। लेकिन भगवान ने कहा कि देखो तुम लोग यदि मेरी भक्त बन की जन्म लेना चाहते हो, ब्राह्मण के वचन को तो मैं टालूंगा नहीं, लेकिन फिर सात बार आपको जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन एक शर्त है, मेरी शत्रु बन जाओगे, विलियन की रोल निभाओगे, मैं हीरो बन के जाऊंगा, तुम विलियन बनकर मेरे साथ लड़ाई करोगे, मुझे विरोध के आस्वादन कराओगे, तो तीन जन्म के बाद वापस आ जाओ। तभी भागवत में ऐसे कहते कि नहीं, जो लोग ने चारों कुमार के अभिशाप से नीचे गिर रहे थे, तो कुमारों लोग ने कहा इनको ठीक है, बड़े दया आ गया इनको हृदय में, इनको है कि ठीक है तीन जन्म के बाद फिर वापस आ जाना वैकुंठ में। तो प्रथम जय विजय को जो चारक कुमार अभिशाप दे दिए, भगवान ने दर्जे पर आ गए, उनकी भगवान के अपने दासों के प्रति इतनी इतनी भाव प्रेम देखकर कुमार तो घाबर गए, कहे क्या रे हम किसको क्या कर देखिए, कितने बड़े गलती किए, प्रभु के दास को ऐसे अभिशाप, तुरंत अपना अभिशाप को वापस लेने के लिए तैयार थे, लेकिन भगवान कहे कि नहीं नहीं ऐसे मेरे इच्छा से ही हुआ है, भगवान को था इच्छा था वीर रस के आस्वादन करना, तो इसलिए ये अंतरंग कारण है, इसलिए भगवान ने प्रकट हुए कि अपने विरोध को आस्वादन करना इनका भी एक कारण था। तो जो भी इस प्रकार हिरण्याख्य को, तो जब हिरण्याख्य को भगवान वराहदेव ने वध करने के बाद हिरण्यकशिपु ने बड़ा क्रोधित हुआ, अपने घर में सबको लेकर इष्टगोष्ठी मनाया, फिर सभी को रुसावान, उसकी हिरण्याख्य की पत्नी उनकी भातीजी और अपने माँ दीति को इनको भगवद गीता सुनाया, सब आपने पढ़े जानते हो और इसके बाद फिर कहा कि इसके बाद गोस्वामी उनके बहुत कहानी भी अच्छा कहा था, दो दो कहानी सुनाया वो क्या महाराज सुजग्ञ की कथा सुनाया, जमराज कैसे आकर उनको समझाए, फिर वो दो कोलिंग पक्षी की कथा कहा है, वो लोग किस प्रकार दोनों को मृत्यु आकर वरण कर लिया, तो ये सब कई कह रहे कि पूरा अपने विद्वता का परिचय दिया इसके बाद, लेकिन लास्ट में घोषणा किया कि जो मेरे भाई को बद्ध किया वो मेरे हमारे घर के शत्रु है, जान से इसको मैं छोड़ूंगा है। इतना भगवत कहने का क्या फायदा, भगवत गीता सुनाने का क्या फायदा, बाद में फिर शत्रु मित्रता फिर वही शुरू हो, न तो शत्रु मित्र भाव नहीं रखते, राक्षस इन कहते जो शत्रु मित्र, देख को शत्रु कहते दूसरे को मित्र कहते, ऐसा ही जो स्वभावपन्न नहीं है उन्हीं को राक्षस कहते। अरे हिरण्यकशिपु फिर प्रतिज्ञा ले लिया, त्रिशूल पकड़ा हाथ में, तीनों लोक में घुमा, घूमते घूमते कहां पहुंच गया, तीनों लोक में कई देवता लोग ने भय से सब छुप गए, क्षीर सागर तक गया, क्षीर सागर में अनंत सज्जा में देखा नहीं, भगवान है नहीं, खाली सज्जा ऐसे पड़ा हो, तो बोला कहां गए, भगवान को कई लड़ा करना था तो वो तो उसकी हृदय में बैठ गए, किस रूप में परमात्मा पे बैठे हुए थे, उसके हृदय में बैठे हुए, और इनको चारों साइड ढूंढ रहा है, जैसा कोई हीरोइन बा उसके नाभि में कस्तूरी हो जाता तो सुगंध आता है, तो कहां से सुगंध आता, पागल हो जाता, घूमते रहता है, चार साइड घूमते घूमते पता नहीं लगाता कहां से, ऐसे घूम घूम के उसके शरीर छूट जाता। हिरण्यकशिपु चारों साइड देखा कि और भगवान विष्णु कहीं नहीं मिले, डिक्लेयर कर दिया गॉड इज डेड, भगवान मर गया है, सुसाइड कर दिया लग रहा है, क्षीर सागर में कुत्त के पास गया, कहा दिखाई नहीं पड़ा, तीनों लोग ढूंढ लिया सब जगह। इसकी बात में लेकिन जानता था कि यदि वो भगवान है नहीं, आपने भगवान डिक्लेयर कर दिया, सभी देवता लोग ने भी स्वीकार कर लिए, इंद्र के सिंहासन पर जाकर स्वयं बैठ गया और सभी राक्षसों को भिन्न भिन्न पोस्ट दे दिया स्वर्ग का, लेकिन फिर भी उसको पता था कि ये शरीर एक दिन क्या होने वाला, नाश होने वाला है, चाहे मैं भगवान बन जाऊं कहने पर भी ये शरीर एक दिन है, कुमारन जो बन जरा एक दिन जरा अवस्था आएगा बुद्ध हो जाऊंगा, इसलिए कहा कि शरीर को मैंने अमर तो सही वो जानता था कि आत्मा अमर है, लेकिन शरीर को भी अमर रखना चाहता है, आत्मा और शरीर, ये शरीर को भी ऐसे ही अमर बनाना चाहता कि इसका भी बुद्ध अवस्था न आए, एक जैसा सब समय भगवान की शरीर जैसा दिव्य है ऐसा ही दिव्य बन जाए, इसलिए सोचकर जाकर मंदराचल पर्वत की घाटी में, घाटी में कितने साल तक उसे किया, 36,000 साल देवताओं की वर्ष में 100 दिव्य वर्ष जाकर कठोर तपस्या किया, अंगूठा के सहारा पर खड़ा हुआ, दोनों हाथ को ऊर्ध्व करते हुए आकाश को देखते हुए खड़े रहा इतने साल, और इसके शरीर में सारे चिट्टियां गिर गए, खिलता भी नहीं था एक पूरे, हमारे शरीर में एक दो चिट्टिया चिट्टी घुस जाए काटना शुरू कर दिया तो क्या होगा, चुट्टी चिट्टियों के ढेर पूरा भर गए, पूरा शरीर के मांस इसकी जितने मेद सब खून सब चाटी है, केवल हड्डी से अस्थि में ही खड़ा था, स्केलेटन जैसे आप देखें स्केलेटन में भी वह उसका आत्मा रुका हुआ था, लेकिन इस तपस्या के बल पर उसकी खपड़ी से इतनी अग्नि धुआं के साथ अग्नि निकलता था, तीनों लोक में व्याप्त हो रहा था, देवता लोग भी अपने अपने घर में नहीं रह पाए, सभी पूरे ताप भर गया सर्वत्र, देवता लोग ने अपने घर बार छोड़ के छोड़ गए किसके पास, ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी को बताया कि देखो ये हिरण्यकशिपु जो है तपस्या कर रहा है, तो आपका ही पोस्ट लेने के लिए, किसका पोस्ट, ब्रह्मा जी का, बोला क्योंकि ये संसार के सभी पोस्ट से जो सबसे ऊपर का पोस्ट वही लेना चाहता है, इसलिए आप कुछ कीजिए नहीं तो आपका ही पोस्ट जाएगा है, ब्रह्मा जी को जाकर समझाए कि आप कुछ कीजिए, तभी ब्रह्मा जी ने आए, ब्रह्मा जी ने आकर देखे, पहले तो आके ढूंढे सारे देवता, मैंने भृगु आदि कुछ ऋषियों को लेकर आए, आकर देवता लोगों ने पीछे पीछे आ रहे थे, हिरण्यकशिपु कहाँ है पता ही नहीं लग पाए, क्योंकि 36,000 साल वो खड़ा है, 100 दिव्य वर्ष इसके शरीर पूरा जा चुका, केवल स्केलेटन खड़ा हुआ है, और जो खड़ा था उसके चारों साइड में सब बाम्बू के वृक्ष भी बड़े बड़े हो गए, घास उग गए थे है? उसके अंदर ये स्केलेटन कहाँ खड़ा था पता नहीं था, केवल वो उसका आग और धुआं को देखकर वो आइडिया लगाए कि यहीं पर होगा, ब्रह्मा जी ने आकाश में देखे और हिरण्यकशिपु की इसे कठोर तपस्या देखकर हैं आश्चर्यचकित रह गए, उनके मुख में हंसी भी आ गए, तब कमंडलों में पानी लेकर अपने दिव्य कमंडलों में हैं 52 देव को जब पैर बढ़ाए थे ऊपर आकाश में तो पानी रखे थे कमंडोल में, पानी थोड़ा छिड़क दिए उनसे, कमा हिरण कश्यप के ऊपर छिड़के तो दिव्य जल में, तो उसके शरीर फिर जैसा था पहले ऐसा ही हो गया, बहुत सुंदर दिव्य जुवा शरीर उसको प्राप्त हो गया है, पिघले हुए सोने के समान उसके शरीर की कांति बढ़ गया। और तभी उन्होंने देखा ब्रह्मा जी हंस की वाहन पर बैठे हुए शून्य में, ब्रह्मा जी के हाथ जोड़कर फिर बड़ा प्रसन्न हो गया ब्रह्मा जी, कम से कम मेरा इतना तपस्या का फल तो देने के लिए कोई व्यक्ति आया है? तो इसको बड़ा प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा, आप ही आदि पुरुष है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का हम स्तुति करते ऐसे ही स्तुति वो करने लगा, किनको ब्रह्मा जी को, नम आदि भी आप ही आदि बीज है, आप ही सभी कारण के कारण है, हम जो ईश्वर को भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हो ऐसे ब्रह्मा जी को ही भगवान बना दिया, क्योंकि भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति उसी को भगवान मानता है, कि भौतिकवादी व्यक्ति जिससे उसको इंद्रिय तत्व के साधन प्राप्त होते हैं। प्रभुपाद जी ने कहते कलकत्ता में था एक सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय द्वितीय महासमर के पास समय में एक व्यक्ति कलकत्ता में रहता था, सारा दुनिया हिटलर को माने घृणा करता था, लेकिन वो क्योंकि वो द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण था, लेकिन ये जो व्यक्ति था डेली आरती उतार था, आरती स्नान करके पहले आके किसका आरती करता था, हिटलर का, जय हिटलर हरे धूप लगा था, क्या बात है। तो बोले कि दुनिया क्या होता हमको इसमें क्या लेना देना, मेरा थोड़ा छोटा बिजनेस था और हिटलर ने ये इसके कारण जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो मैंने कड़ाबाजारी करके इतना भी करोड़पति बना, तो जिसने मुझे करोड़पति बनने में सहायता किया वो मेरे लिए भगवान है। तो इसी प्रकार हिरण्यकशिपु ने सोचा कि ब्रह्मा जी ने मुझे वर देने के लिए आए और इन्हीं की कृपा से अभी मैं भगवान बनूंगा, पता नहीं कि कोई योग सिद्धि से कोई भगवान नहीं बनता है, भगवान तो जन्म से ही अपने भगवत्ता का परिचय दे, राक्षसों के ऐसे ही विचार होता है। इसलिए ब्रह्मा जी को पहले तो पद्म प्राण में कहते भगवान ब्रह्मा जी ने बोल दिया, देखो मैं अमर नहीं हूं, तुमको कैसे अमर बनाऊंगा, मैं स्वयं भी मुझे भी शरीर त्यागना पड़ता है, कल्प के अंत में जब मेरे 100 साल परमायु समाप्त हो जाता मुझे भी शरीर त्यागना पड़ता है, तुझे मैं अमर कैसे बना सकता हूं। तो बोला अच्छा ये तो बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन मैं कुछ तो अपने इंटेलिजेंस ऐसे ही उपयोग करूंगा, ऐसे ही बर ले लूंगा, अमर ही बनी जाऊंगा। इसलिए उन्होंने ऐसे प्लान करके ही वर मांगा। क्या वर मांगा हूं कि आपके जैसे कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, ब्रह्मा जी का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, कहा कि मेरा भी जैसे कोई प्रतिद्वंदी नहीं रहेगा, अपने विराट रूप को इस मैं क्योंकि प्रभु है श्रेष्ठ वरदाता, यदि यदि दास्यस्य अभिमतान वरान में वरद उत्तम हे बर सब वरदाना वरदा में सबसे उत्तम श्रेष्ठ, तो कहते हैं वरदराजन वो वहां रहते कहां साउथ इंडिया में रहते ना, कांचीपुरम में वरदराजन है, लेकिन वो ये कह रहा है कि आप ही वरदराजन हो, कौन हिरण्यकशिपु कह रहा है कि हे वरान में वरद उत्तम भूतेभ्य तम विशिष्टेभ्य मृत्युमाभूत मम प्रभु, हे प्रभु हे श्रेष्ठ वरदाता, यदि आप मुझे मेरा मनचाहा वर देना चाहते हो तो यह वर दें कि मैं आपके द्वारा उत्पन्न किसी भी जीवों के द्वारा मृत्यु को प्राप्त न करूं, किसी भी जितने भी ब्रह्मा जी के सृष्टि में 84 लाख जोनी में किसी भी प्राणी के द्वारा जैसे मेरे मृत्यु न हो। आगे कहेंगे मुझे यह भी वर दें कि न तो घर के अंदर न घर के बाहर, न दिन के समय न रात में, न भूमि पर न आकाश में मरूं, मुझे वर दें कि मेरी मृत्यु न तो आपके द्वारा उत्पन्न जीवों के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा भी हो, न किसी हथियार से हो, न किसी मनुष्य या पशु के द्वारा भी हो, आप मुझे ये वर दें कि किसी सजीव या निर्जीव प्राणी के द्वारा भी जैसे मृत्यु नहीं होगा, ये नाखून सजीव नहीं कि निर्जीव नहीं है, ये है आंगुली के असर लगा हुआ लेकिन उसको आप पूरा निर्जीव भी नहीं कर सकते, सजीव भी नहीं कर सकते, भगवान इसे नाखून से फड़ा है इसको, ताकि किसी सजीव या निर्जीव प्राणी द्वारा मेरी मृत्यु न हो। मुझे यह भी वर दें कि मैं किसी देवता या असुर द्वारा या अधोलोक के किसी बड़े सर्प द्वारा न मारा जाऊं, क्योंकि आपको युद्धभूमि में कोई मार नहीं सकता, इसलिए आपका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, इसी प्रकार आप मुझे यह भी वर दें कि मेरा भी कोई प्रतिद्वंदी न हो, मुझे सारे जीवों तथा लोकपालों का एक छत्र स्वामित्व प्रदान करें और उस पद से प्राप्त होने वाला समस्त जस दें। साथ ही मुझे लंबी तपस्या तथा योगाभ्यास से प्राप्त होने वाले सारी योग शक्तियां दें, क्योंकि ये कभी भी विनष्ट नहीं हो सकती। अष्ट सिद्धि ये भी सर मांग लिया, और अभी ये सब वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यप सोचा कि मैं क्या बन गया, अमर बन गया, तीनों लोग को सताने लगा। सबसे पहला ये देवताओं को बोला, ये देवताओं को भी शासन करने के लिए, ये देवताओं की बल किससे बढ़ता है, यज्ञ से बढ़ता है, यज्ञ करने से देवताओं की बल बढ़ता है, वो यज्ञ से घी होती, घी आहुति दिया जाता है, वो उनको खाद्य के रूप में वही ग्रहण करते हो, तो कहा कि यज्ञ बंद करो, पहले कोई यज्ञ नहीं कर सकता मेरे राज्य में। ये गाय के यज्ञ का मैंने घी कहां से आता है, गाय से ही, गाय दूध देता फिर वैसे घी बनाते हैं, इसलिए गाय को सब समाप्त करो, जहां भी गाय है यही राक्षसी सभ्यता है, गाय को काटो है, सब गाय को समाप्त करो, और जो ब्राह्मण है इनको भी सब समाप्त करो, यदि देखते कहीं कोई ब्राह्मण यज्ञ करता है उसको भी भागा वहां से, ब्राह्मण को भी यदि नहीं मानता उसको भी जान से मार जाओ। तो इसी प्रकार हिरण्य के तीनों ये बढ़ते लोग में फिर स्वर्ग में गया, फिर देवताओं को सब भगा दिया, इंद्र की सिंहासन पर बैठा है, बड़ा आतंक किया देवता लोग ने, फिर भयभीत होकर जब प्रार्थना करने लगे भगवान को, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा फिर देवताओं ने प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, अभी थोड़े दिन में जब वो अपने महाभागवत पुत्र कौन प्रहलाद के चरण में वो उसको सताएगा, तो मैं प्रकट होकर उसको विदारण कर दूंगा, चिंता मत करो। ब्रह्मा जी के सारे वर को सारे वचन को रक्षा करते थे, देवता लोगों ने बड़े भयभीत थे, अभी ब्रह्मा जी ने ऐसे ऐसे वचन दे दिया इसको, कैसे मरेगा ये है, उनकी सृष्टि में किसी की तरह मर गए, तो लेकिन भगवान कहे ब्रह्मा जी के सारे वचन को रक्षा करते हुए मैं इसको मार डालूंगा, चिंता मत करो। इसलिए आप जानते हैं हिरण्यकश्यप को सभी लोग भगवान कहने लगे, इंद्र चंद्र वरुण ये सब देवता लोगों ने सब भेंट लेकर आते थे, इसको प्रणाम करके भेंट देते थे और कहते थे जय भगवान हिरण्यकश्यप की। देवता लोग ने भय से कह रहे थे, आप लोग भी जय करने लगे, ठीक है, हिरण्यकश्यप की जय सभी लोग करते थे, देवता लोग भी, मुनि ऋषि सभी हिरण्यकश्यप की जय गान करते, लेकिन एक व्यक्ति नहीं करता था, उसी का ही क्या बेटा, उसी का ही बेटा प्रहलाद, वो नहीं कहता था। वो जब इसको भगवान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, वो हिरण्यकश्यप ने इसको संध्या अमर के स्कूल में शुक्राचार्य के एब्सेंट था, शुक्राचार्य के ट्रैवलिंग में तीर्थ यात्रा में था, तो उनकी जो दो पुत्र थे संध्या अमर को उनकी गुरुकुल में इनको एडमिशन कर दिया था, कहा था कि मेरे बेटा का अच्छे से पर्सनल केयर लेकर इसको सिखाओ, राजनीति अर्थनीति समाजनीति बात में मेरे उत्तराधिकारी यही बनने वाला है, तो इसको ठीक से ट्रेन अप करो। तो लगता लेकिन टीचर जो सिखाते थे उसको सीखते नहीं थे, वो पहले से के और किसी से ट्रेन अप हुए थे, किससे, नारद मुनि से, कयाधु को जो हिरण्यकश्यप तपस्या चला गया, देवता लोग ने आकर हिरण्यकश्यप की राजधानी को आक्रमण कर लिया, कयाधु को पकड़कर खींच कर ले जा रहे थे, वो चिल्ला रही थी, कोई कुरोरी पक्षी पक्षी की तरफ चिल्ला रही थी, जैसे कोई चील आकर पकड़ लेता कहीं, तो इस प्रकार इंद्र आकर उसको अरेस्ट करके ले जा रहे थे, बहुत जोर से चिल्ला रही थी, वो जाने नहीं चाहते थे, उसकी गर्भ में बच्चा थी, लेकिन नारद जी ने दया आ गए सामने, इसलिए नारद जी सबको प्रिय है, वो हर को हिरण्यकश्यप की प्रिय बन गए, क्योंकि इसका उसका पत्नी को रक्षा की। तो नारद जी ने कहे कि क्या कर रहे हो तुम लोग, देवता होकर राक्षसों के कर्म कर रहे हो, ये अबला स्त्री सती स्त्री को क्यों पकड़ कर लेके जा रहे हो, वो नहीं जा रहा, सती स्त्री है, उसके क्रोध में तुम सारे नष्ट जल जाओगे, नष्ट हो जाओ, अभिशाप देगी। तो बोले कि ये नारद जी जानते नहीं हो कि ये कौन है, ये है मिसेस हिरण्यकश्यप। आप जो सोच रहे कि ये नहीं, ये मिसेस हिरण्यकश्यप, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यप के वीर्य है, अभी हम तो इसको कुछ नहीं करेंगे, ले जाएंगे हमारे साथ में, जब बच्चा जन्म होगा बच्चा को समाप्त करेंगे, जन्म होते कम से कम बुद्धि यही था। नारद ने कहे कि ये ठीक नहीं है, तुम सोच रहे हो ये राक्षस है, राक्षस नहीं है, ये महान भक्त है, महाभागवत वैष्णव है, इसको आप चाहने पर भी बध नहीं कर पाओगे, तीनों लोग की समस्त शक्ति एकाठी होकर भी इसकी कुछ नहीं कर पाएगा। हिरण्यकश्यप की पुत्र फिर ऐसे भक्त कैसे बन गया, हिरण्य बाप से बढ़कर बेटा होता ना, और बाप की हिरण्यकश्यप की से बेटा हुआ प्रहलाद, ऐसा कैसे संभव हुआ, इसकी नृसिंह पुराण में वर्णन आता है, जो हिरण्यकश्यप पहला दिन तपस्या में गया कयाधु को कहा कि देखो मैं जा रहा हूं तपस्या के लिए और जब तक मैं भगवान बन नहीं पाऊंगा, ईश्वर नहीं बनूंगा, तब तक वापस नहीं आऊंगा। भगवान बन पने पूरे मेरे तो देख रहा है कि यदियों मैं सब सर्व सब शक्ति से संपन्न हूं, लेकिन शरीर आस्ते आस्ते वृद्ध हो रहा है, ये लग रहा है कि ये बुढ़े हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा शरीर आस्ते आस्ते, लेकिन इसको भी मैं नित्य बनाऊंगा, जैसे आत्मा नित्य, ये भी इसको भी जवान रखूंगा, इसके लिए तपस्या करना पड़ेगा मुझे। जब तक मैं संपूर्ण रूप में हजार अमर नहीं बनूंगा, वापस नहीं आऊंगा। काशी तो गया, लेकिन जाकर जब तपस्या के लिए खड़ा हो गया मंदराचल पर्वत में, दोनों अंगूठा भर में खड़ा हुआ ऊपर हाथ करके, तभी नारद मुनि और पर्वत मुनि दो तोता बनकर आए, दो तोता के रूप धारण करके दोनों दोनों साइड में खाकर, यानी वो वृक्ष में इसका दोनों का साइड में वृक्ष खड़ा होकर ये बैठकर क्या कहें, नारायण 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 नारायण, मैं तपस्या करने आया, मेरा शत्रु के नाम कौन है, भागा हुआ इनको, भागा था फिर तपस्या छोड़ के भागा था, थोड़े उड़ जाते पक्षी है, उड़ जाते थे फिर ये जो तपस्या फिर खड़ा होकर फिर आ जाते थे, नारायण नारायण नारायण, नारद मुनि की विशेष कृपा करना था, तो बार बार ये नारायण नारायण शब्द दिन भर ऐसा ही गया, और भागा था तो फिर आते थे नारायण नारायण कर, वो दृश्य पूरा उसके अंदर में घुस गया, वो दिन रात बस वो घर में भी शाम हो गया, बोला आज कुछ ठीक नहीं था, जो घर से निकला ठीक से, मैं ज्योतिष तत्व वगैरह देखकर मुहूर्त देखकर सही मुहूर्त से निकला नहीं, गड़बड़ी है, चलता हूं दोबारा फिर आऊंगा, इसलिए वापस आया था। कयाधु बोला क्या हुआ, आप तो बोले थे भगवान नहीं बनने से आओगे नहीं होगे, तो कैसे आज एक दिन में हो गया, एक सुबह गए हम, बोले नहीं नहीं हाँ क्या करूं मैं आज इसे घर से निकलने का मुहूर्त ठीक नहीं था, कालबला में कभी निकाला गया, कैसे ही वहां जाते ही और दो पक्षी आ गए, और दो पक्षी आकर मुझे डिस्टर्ब करने लगे, मेरे शत्रु का नाम लेने लगे। कयाधु भक्तिमती स्त्री थी, पति किसकी नाम ले ले लिए क्या बोल रहे थे, तो नारा हिरण कैसे कहने लगा, नारायण नारायण नारायण, तो हिरण होगी, बोला अरे हिरण्य कश्यप की मुख से आज किसका नाम है, भगवान नारायण के नाम है, हैं? तो वो बार बार ऐसे पूछते रहे, वही घटना को घुमा फिर के, अरे क्या बोलते थे वो लोग, कैसे बोलते थे, फिर वो बोलता था बार बार कयाधु को सुनाने के लिए, नारायण 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 ऐसे बोलते थे पक्षी, मुझे ध्यान कर नहीं दिए, बार बार आगे धारण मेरे शत्रु के नाम लिए, लेकिन ये नारद जी की कृपा थी, इसलिए वो दृश्य उसके मन से नहीं जाता था, किसका, हिरण्यकश्यप, कोई देखा ही पड़ता था पक्षी कैसे आते थे बैठकर, नारायण नारायण नारायण, पूरा नारायण नाम उसके शरीर में पूरा घुस गया था, सारे कलमश से रहित हो गया था, इसलिए कयाधु भी इस सुजोग को देखकर उसके साथ उस रात्रि में सहवास करने से हिरण्यकश्यप को वीर्य धारण की, इसी से कौन जन्म हुआ, प्रहलाद, इसलिए वो इतने महान भक्त बनाए थे, नृसिंह पुराण में वर्णन आता नारद जी ने कहा था। तब इसी और कई जगह पर और कई कारण बता गया, लेकिन एक कारण ये है, तो अभी प्रहलाद अकेले उनकी बात को नहीं सुनता था, किसके बात को, हिरण्यकश्यप, सारे लोग इसको भगवान मान लिया, हाँ तीनों लोक में कोई देवता इंद्र चंद्र वरुण आदि, लेकिन ये नहीं मानता था, है? एक दिन बड़ा माने बड़ा सारे कथा क्लास समाप्त करना, तो लेकिन एक दिन ऐसे हिरण्यकश्यप ने अपने सिंहासन पर बैठा था और संध्या मर के इसको स्नान पान, जो माता कौन कयाधु ने इसको अपने प्रहलाद को स्नान पान करके उनको अच्छा से ड्रेसिंग कर दिया, तो उसको लेकर आए, संध्या मर को सोचे थे कि हम बहुत अच्छा सिखा दिए इसको, किसको, प्रहलाद को, सब अर्थनीति राजनीति कूटनीति कैसे प्रजाओं में भेद करना, फिर उनके अंदर में कैसे मैंने दोनों मतभेद करके फिर बीच में जाकर इसका समाधान करना, इसको कूटनीति से सिखाए थे, सोचे कि अभी हिरण्यकश्यप के सामने ये लोग सही, हम जो पढ़ाया सब सही सही बोलेगा, ये कहकर लेके आया प्रहलाद, प्रणाम किया, किनको, हिरण्यकश्यप, प्रहलाद तो स्वाभाविक बड़े शांत शांत रहते थे, इनके स्वभाव बहुत सुंदर भागवत में वर्णन है, प्रहलाद मार्ग से थे, तो वहां पर प्रणाम किए पिताजी को, प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप बड़ा भाव में बात्सल्य में मोहित हो गए, उठाया अपने पुत्र को गोद में लिया, इनको सूंघा, उनके सिर को सूंघा, इनको चुंबन देकर बड़ा आनंद लिया, छाती में मिलाया, इसके बाद गोद में बैठाकर बोला कि बेटा प्रहलाद, तुमने इतना दिनों से जो गुरुकुल में शिक्षा लिया है, अपने टीचर से पढ़ाया है, कौन सा बात तुमको सबसे अच्छा लगा, सबसे उत्तम शिक्षा तुमने क्या सीखा प्राप्त किया, वही हमको बताना मुझे। तो प्रहलाद ने कई बात कहे, लेकिन खाली एक कहा कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता भक्तिश्चेत नवलक्षण कहने लगे। हिरण्य कशि देखने लगा किन की तरफ, संधमर को क्या सिखाए मेरे बेटा, संधमर कहे कि हमने नहीं सिखाया इसको, ये अपने आप उसके अंदर कहीं अंतकरण से ही वो अपने आप आता है, हमने ही सिखाया इसको ये बात। वो भय में तो कंपने लगे कि हिरण्य कशि गाली देने लगा है, अरे ब्रह्म बंधु क्या सिखाया मेरे बेटा को, 5 साल के मेरे बेटे बेटा है, इसकी मति को आप लोग बिगाड़ दिया है, ऐसे ही तुम मेरे हितकांक्षी बाहर से दिखाई पड़ रहे लेकिन तो आप तो मेरे शत्रु हो, बहुत गलत तो वो लोग ने भाई हमको ऐसा निंदा मत करो, हम ब्राह्मण है तुम्हारा हित नहीं होगा। ये प्रहलाद कहां से सीखा हमें पता नहीं, हमें ऐसे कुछ भी नहीं सिखाया इसको, वो अपने स्वतः सीखता है। प्रहलाद की तरफ देखा बोला कहां सीखा, जब तुम्हारा टीचर नहीं सिखाया कहां से सीखा, कहां से सीखा है? इसकी बात तो सोचा कि अरे वो तो कहा प्रहलाद जी जो उत्तर कुछ हुआ, लेकिन पहले हिरण्य कश्यप सोचा कि अच्छा इसको ये जो श्लोक बोला इससे अच्छा है कि एक शब्द को उठाकर मेरे नाम लिख देगा तो विष्णु को हटाकर वहां दे देगी, हिरण्य कश्यप लिख देगा, श्लोक तो बहुत अच्छा है केवल वो नाम का उठा देने का, तो वो खेल का क्या विष्णु, तो वहां पर हिरण्य कश्यप लगा दे, अब पूरा श्लोक अच्छा है, शिशु का मत इसको इसको सुधारा जा सकता है, इसको बताने का तो कहे कि प्रहलाद देख पुराण में से बता गया किसी पुराण में, तो इसको पूरा ऐसे श्लोक से बहुत अच्छा है लेकिन एक नाम को उठा दो, ये विष्णु जो लिखा ना बीच में इसको हटाओ, यहाँ क्या लिखना हिरण्यकशिपु, तुम जो सिखाया वो गलती सिखा दिया, यहाँ पर हिरण्यकशिपु रहेगा और सब ठीक है, श्रवणम कीर्तनम हिरण्यकशिपु स्मरणम, बस ये होगा तो श्लोक सही है। प्रहलाद कहे नहीं विष्णु स्मरणम, बोला कि इसका पूछ तो पूरा कुत्ते की पूछ जैसे है, इसको सीधा कभी नहीं होता, फिर हिरण्य कश्यप बड़ा क्रोधित हुआ है और कई श्लोक कहा, क्रोधित होकर पूरा उठा के फेंक दिया, कहा मैंने गोत्र में बैठ लेकर बैठा था फेंक दिया, घटना कहां घटित हो रहा था, कहां नृसिंहदेव प्रकट हुए थे, अहविल्लो में वो खंबा है जिसमें नृसिंहदेव प्रकट हुए थे, वहीं पर हिरण्य कश्यप का ये महल था, तो बोले अच्छा फेंक दिया, कहा कि देखो ये लड़का मरने का जो नहीं क्या मरने का योग्य है, इसको मारो, सभी लोग मिलकर मेरे सामने से हटा लो, इसको जान से मार डालो, ये मेरा भाई को भाई को वध करने वाला जो विष्णु है उसका उसके साथ मिला जुला हुआ है, ये मैं हमारे घर के शत्रु है, इसको जान से मार डालो, अरे राक्षस कुल के ये कलंक है, इसको मार डालो। राक्षस लोग को सहज चल तो बड़ा बड़ा अस्त्र शस्त्र से आक्रमण किए प्रहलाद को, लेकिन कुछ नहीं हुआ, फिर इसको पागल हाथी के पैर के नीचे डाले और सांप के जब बड़े बड़े सांपों के बीच में डाल दिए, हिंस जंतु हिंस जंतु के बीच में डाले, कुछ भी नहीं हुआ, जहर भी पिला दिया वो भी इसमें भी कुछ नहीं हुआ है, फिर उन्होंने पहाड़ के ऊपर से लेकर पहाड़ के चिट्ठी के ऊपर से बोला राक्षस फेंको इसको समुद्र में, तो वहां से भगवान ने इनको पकड़ लेते थे आकाश में लाकर घर उसके घर के सामने छोड़ देते थे, कुछ होता नहीं, किसी कुछ भी नहीं, किसी प्रकार से नहीं मरा प्रहलाद। लास्ट में अपने बहन को बोला होलिका, अरे तुझे सिद्धि है कि आग के अंदर प्रवेश कर जाने से वो जलती नहीं थी, उसकी सिद्धि थी, ये प्रहलाद को लेकर आग के अंदर प्रवेश कर जाए जल जाइए, तो वो प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश किया तो स्वयं जल गई, कौन होलिका, क्योंकि वैष्णव अपराध किया, महाभागवत वैष्णव को वध करने की भावना कर रहा रखता, तो हिरण्य कुछ हैरान हो गया, बोला कि लग रहा है कि तो अमर बन गया, कौन ये प्रहलाद अमर बन गया है, अमर बनने के लिए मैं तपस्या क्या था, तपस्या का फल इसको मिल गया है, अभी क्या होगा इसको कैसे, ये तो किसी भी रूप से नहीं मर रहा है, अस्त्र शस्त्र से आग से किसी भी हालत से इसकी बध नहीं हो रहा, ये अमर बन गया है और इसके साथ सतर्कता करके मेरे को लगता है कि मेरा ही समाप्ति होगा परमायु का, बड़े चिंतित होकर भावी ऐसे ही है, कोई और उपाय न देकर नीचे मुख कर खड़ा था, तो संधमर कह कि नहीं महाराज इतनी दुखी मत हो, हमें विश्वास है कि हमारे तरफ नहीं होगा, लेकिन हमारे जो गुरु जी कौन शुक्राचार्य, वो जब वापस आ जाएंगे निश्चित रूप में इसका मति को बदल देंगे, उनके पास में कड़ा है, हम लोग इसलिए अभी तक इसको दीजिए, हम लोग सुरक्षा करके हमारे साथ में रखते हैं, और शुक्राचार्य जब तीर्थयात्रा से वापस आएंगे तो इसका मति ठीक कर देंगे, उनके चरण जब स्पर्श करेगा इसका बुद्धि सब सुधर जाएगा, और हिरण्य कश्यप के पास में कोई अल्टरनेटिव नहीं था, मारने वध तो नहीं कर पाया तो इसलिए दे दिए, बोला ठीक है आप लोग रखो, और प्रहलाद तब तो शुरू कर दिया, बोले तो और प्रचार नहीं करते थे, खाली स्वयं भक्ति करते थे, अभी प्रचार स्टार्ट कर दिया है। तो फिर बच्चों लोग ने जो मैंने ये टीचर लोग ने जाते थे अपने घर में रिसेस में, कुछ कभी कोई समर वेकेशन भी पड़ता था, समर वेकेशन और एक मास छुट्टी आप लोग पड़ता है तो कभी कभी पड़ता है, तो गुरुकुल बंद कर रहता था, ऐसे बच्चों लोग खेलकूद करते थे इधर उधर। लेकिन ये प्रहलाद एक जगह बैठकर आपने भगवान को भक्त क्या विष्णु स्मरण करते, क्योंकि आचार्य जी उसी में किसमें विष्णु नवधा भक्ति के स्मरण में प्रहलाद जी के नाम है, सदा भगवान को स्मरण सब समय हृदय में धारण करके रखे। तो ये कि खेलकूद नहीं करते, चुपचाप बैठ के अपने भगवान का ही स्मरण करते थे। तो बच्चे लोग नहीं बोले यार ये प्रहलाद क्या कर रहे, तुम खेलता नहीं कूदता नहीं, हम सब देखो खेलते कूदते ही कर। तो प्रहलाद कहे कि आप लोग बहुत खेल कूद के हैं लेकिन क्या आप कुछ जानते नहीं हो जीवन का लक्ष्य, मैं कुछ आज आप लोग को बोलना चाहता हूँ, आप लोग बैठो खेल कूदना है तो खेल कूद कैसे करते मैं तुमको सिखाता हूँ। बोले तुमको हरे कृष्ण कीर्तन कराए, खड़ा करी बोले बोले कीर्तन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम नाचा है सबको, हरे कृष्ण कीर्तन नाचना सबको अच्छा लगता है, नाचना गाना और खाना तीनों चीज हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं, किसी भी अच्छा लगता है नाचना गाना खाना, ये क्यों अच्छा लगता है, ये भगवान को अच्छा लगता है तीनों है, भगवान भी नाचते हैं राधारानी के साथ है, राशेश्वर है राशेश्वरी है, नाचने में गाने में इनको बड़ा बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद राधारानी का कुकी खाते हैं अच्छे प्रसाद, जगन्नाथ छप्पन भोग खाते हैं, तो ये तीनों भगवान को भी अच्छा लगता है, इसलिए सदैव तो उनकी अंश जीवात्मा को भी अच्छा लगता है। प्रहलाद ने अपने बच्चों को अपने सहपाठी को नचाया, अच्छा से हरे कृष्ण कीर्तन कराया, नाचने के बाद कह के थोड़ो बैठ जाओ भागवत का, वही तो आप लोग गुरु पूजा में नाचते थे, फिर बैठ जाओ भागवत का थोड़ा मैं सुनाता हूँ कुछ, बैठा दिया बैठाकर सुनाया है। कौमारे आचरत प्राज्ञ धर्मान भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म यद्यपि अध्रुवम अर्थदम, समझे इसको, ये भक्ति जब भगवान विष्णु की भक्ति कुमार अवस्था से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, यदि यह दूसरे जीवन के दूसरे जोनी की तरफ प्राप्त हुआ शरीर जैसे नष्ट हो जाता है, मनुष्य शरीर भी नष्ट होने वाला, लेकिन फिर भी विशेष अर्थ है मनुष्य जन्म का है, मनुष्य जन्म में भगवान की भक्ति यही भागवत धर्म के सिद्धांत है, इनको समझे, समय के साथ वृथा व्यतीत करना नहीं चाहिए। सुखम न इंद्रिय कं दैत्या देह जोगे न देहिना सर्वत्र लभ्य दे दैवा जथा दुख अजत्म, पूर्व प्रारब्ध के आधार पर तुमको जितना दुख मिलना का इतना मिलेगा, जितना सुख इतना ही मिलेगा है? जैसे कोई दुख नहीं चाहता है दुख मिलता है, इसी प्रकार कोई सुख नहीं चाहने पर भी जितना सुख मिलना इतना मिलेगा, ऐसा वृथा प्रयास नहीं करना चाहिए, समय जो है इसको भगवान भजन में लगाना चाहिए। प्रहलाद समझे तत्प्रयास न कर्तव्य जत आयु वय परम न तथा विन्दते खेमं मुकुंद चरणाम्भुजम, ऐसा प्रयास करके भौतिक प्रयास करके धर्म अर्थ काम ऐसे ही जो इंद्रिय तृप्ति के साधन को प्राप्त करने के लिए समय नहीं है, एक क्षण का समय बीत गया दोबारा वापस नहीं आने वाला, स्वर्ण करोड़ों स्वर्ण रुपया देने से भी, तो इसलिए मुकुंद के चरण में भक्ति करो। अच्छा बहुत सुंदर है ये छठा अध्याय आता है, तो प्रहलाद ने बहुत अच्छा शिक्षा दी है सहपाठियों को, और राक्षस पुत्र सब स्वीकार कर लिए इसका शिक्षा को, किसका प्रहलाद की शिक्षा से स्वीकार कर ली। प्रहलाद ने कहे कि ये जो दिव्य ज्ञान में सिखा था कहा, नारद मुनि के मुझे सिखाए थे, माँ के गर्भ में जो था नारद मुनि ने तो मेरे को और मेरे माँ को दोनों को सुना रहे थे, लेकिन माँ तो मेरे पिताजी की चिंतन करते थे करती थी कब हिरण्य कश्यप वापस आए हैं, लेकिन मैं और स्त्री होने के कारण वो भूल गई, मैं अन्य मनस्क रही, लेकिन मैं तो माँ एक नारद जी की विशेष कृपा था मेरे प्रति कि मैं इनकी शिक्षा को धारण कर सकूं, इसलिए उन्हीं की कृपा से उन्हीं के मुखारविंद से ये जो सुना था सब कुछ मुझे स्मरण है। प्रहलाद ने कही कि आप लोग भी यदि मेरे तरफ शिक्षा को ग्रहण करोगे आप भी भगवत धाम जाने के लिए सभी योग्य बन जाओगे। आप बच्चे लोगों को सब रिजेक्ट कर दिया, संधामर को जो सिखाए थे इसको कैंसिल, अभी सब प्रहलाद की शिक्षा ग्रहण कर ली। प्रहलाद को था बात को सुन के फिर कीर्तन करना कीर्तन कर रहे थे एक दिन, और संधामर का आया देखे कि सारे नाच रहे हरे कृष्ण कीर्तन चल रहा है, कहा पूरा गुरुकुल में सारे बच्चे प्रहलाद में प्रहलाद लीडिंग कर रहा है, सब नाच रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। बोले यारे आज तो सर्वनाश हुआ, सर्व क्या करेंगे, अभी पूरा गुरुकुल ही विष्णु भक्त बन गए, अभी तो हिरण्य किसी को पता लगेगा हमको लेके सुड़ी में चढ़ा देगा, अभी पहले में जाकर हम व्यवस्था करते भागते भागते वही जगह हिरण्य किसी को प्रणाम करके दंडवत प्रणाम करके कहेगी महाराज सर्वनाश हुआ, सर्व क्या हुआ बोलो बोलो। रोना शुरू कर, बोले कि आपकी पुत्र जो है प्रहलाद, हम इसको ले गए पूरा गुरुकुल को, सारे राक्षस बताओं को क्या बना दिया, भक्त बना दिया है। लेकिन बनवाई प्रभु हमारे खुलते नहीं है, सेक्टर खुलना चाहिए ना, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं प्रहलाद का स्कूल खुलना चाहिए। जितना कॉलेज यूनिवर्सिटी है सब सब स्कूल का नहीं, जो जितना इसलिए खोला जाता है इंजीनियरिंग का जो यूनिवर्सिटी है जो जो है उसके बाजू में एक प्रहलाद स्कूल खुलना चाहिए है, एक बेस खुलना चाहिए, खुल के उनको पढ़ाना चाहिए। क्या है वो जितने कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी है जो क्या है, ये संधमर्क का स्कूल है, ये है ये सारे संधमर्क के शुक्राचार्य के स्कूल है, यही सिखाते हैं। क्या है मनी कमा धन कमा, डिग्री किस लिए लेना है, किसी ने धन कैसे मिलेगा, मनी स्वीटर देन हनी ब्राइटर देन सनशाइन, इसी खाते स्कूल वाले, डिग्री लो नौकरी करो या बिजनेस करो पैसा कमाओ, और जितने संभव इतने इंद्रिय तृप्ति कर लो, ऋणं कृत्वा घृतं पिबे जावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमन भवेत है, चार्वाक मुनि कहता था। आज के सुबह ही फलवा रहे, कौन जानता है शरीर भस्म हो जाने वाले की क्या होने वाला है, जितना दिन शरीर में है अच्छा से अच्छा खा के, वो मुनि ऋषि था इसलिए वो कहा था कि घी पियो है, घृतं पिबत, लेकिन अभी शराब पियो बोलते हैं, बस शरीर तगड़ा बनाओ और बस जितनी इंद्र तृप्ति कर लो, कौन जानता क्या होने वाला, यही शिक्षा है। लेकिन प्रहलाद महाराज की शिक्षा इससे अलग है, नारद मुनि की शिक्षा। इसलिए आप लोग जो प्रहलाद के स्कूल खोल के प्रहलाद को किसके चला बनोगे, प्रहलाद का नारद मुनि का या शुक्राचार्य का है, तो अभी सारा दुनिया में शुक्राचार्य स्कूल खुला हुआ है, पूरा दुनिया में यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज भरा हुआ है, प्रहलाद के स्कूल जरूरत है कि प्रहलाद छोड़ना पड़ेगा वहां देखिए, फिर ये सबको क्या करेगा भक्त बनाएगा है। तो इसलिए कई लोग अच्छे कर रहे हैं, पुणे में बहुत सक्सेसफुल है, चौपाटी लोग कितने भक्त बना रहे हैं, ऐसे करके ऐसे सब बेस बना बना के प्रहलाद बना रहे हैं, स्कूल में बस घुस के हैं, कॉलेज में स्कूल में, तो ऊपर चाहते थे ऐसे ही हो, ऐसे भक्त बने। तो ये तो हिरण्य कश्यप बोला अरे इतने दुष्ट ले गया, वो तो समझ क्या किया, जैसे कोई पैदा मतलब सांप के ऊपर कोई पैर डाल देता कहीं अंधारा, जो सांप क्रोधित होकर फां फां करता, ऐसा ही हो रहा है, हिरण्य कश्यप तो पूरा क्रोधित होकर और उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, पूरी क्रोधित होकर बोला लाओ प्रहलाद को मेरे सामने, देखिए तो पकड़ के लिए प्रहलाद को सामने, प्रहलाद महाराज देखे कि इतना क्रोधित है हिरण्य कश्यप, उसको शांत करने के लिए बड़े उनकी वयस के अनुजाई इनकी उम्र के अनुजाई उनके स्वभाव के अनुजाई इनको डांटने का वैसे ही कटु वचन कहने का उम्र नहीं था, लेकिन फिर भी हिरण्य कश्यप जब प्रहलाद को सामने देखा इतना क्रोधित हुआ है और बहुत गाली देने लगा, किनको हिरण्य कश्यप, इतना क्रोधित था कि उसके सामने प्रहलाद महाराज भी भयभीत हो तो तुरंत चरण में गिर पड़े, उठकर इनको बड़ा समझाने के लिए थोड़ा इनको शांत कराने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वो शांत होने वाला नहीं था है? तभी जब हिरण्य कश्यप सारी स्थिति समझ गई संधमर्क से, वो इतना अधिक क्रोध हुआ कि उसका सारा शरीर कंपने लगा, इस तरह उसने अंततः अपने पुत्र प्रहलाद को मार डालने का निश्चय कर लिया। हिरण्य कश्यप स्वभाव से अत्यंत क्रूर था, अपने को अपमानित हुआ जानकर वह पांव से कुचले सर्प की भांति फुफुकार करने लगा। उसका पुत्र प्रहलाद शांत विनम्र तथा भद्र था, वह इंद्रिय संजमी था, हिरण्य कश्यप के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा था, वह अपनी आयु तथा आचरण के अनुसार प्रताड़ना के योग्य न था, फिर भी हिरण्य कश्यप ने टेढ़ी नजर से उसे घूमते हुए निम्नलिखित कटु शब्द में फटकारा। हिरण्य कश्यप ने कहा हे दुर्मतिन मंदात्मन कुल भेद कराधम, ऐसे शब्द है स्तब्धम मत शासन ऊर्धम निश्चित अंग अद्य जमाक्षयम, अभी तुमको मेरे शासन को तुम उल्लंघन किया है, तुझे कहां भेज दूंगा, जमा को भेज दूंगा, हिरण्य कश्यप चिल्ला रहा था, क्रोधित तो होकर बोल रहा था प्रहलाद तुम मेरे इतना हिम्मत है तुम मेरी को मेरे शासन को तुम उल्लंघन किया, अरे दुष्ट पुत्र प्रहलाद तुम जानते हो कि जब मैं क्रुद्ध होता हूं तो तीनों लोग अपने अपने नायकों सहित कंपने लगते हैं, तो फिर तुम किसके बल पर इतने दुष्ट हो गए हो कि तुम निर्भीक होकर मेरे आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। प्रहलाद ने इतने जो गुस्सा हो रहा था, लेकिन प्रहलाद महाराज ने बड़े शांत भाव से हाथ जोड़कर खड़े थे, कहने लगे न केवलंग में भवतश्च राजन सबई बलंग बलिनां चापरेशाम परे अवरे अभिस्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन बसंपनीताः। हिरण्यकश्यप बताया कि तुमको कौन बल देता है इतना, मेरे सामने ऐसे ही तुम जवाब दे रहा है, तुमको कौन शक्ति दे रहा है, कहां से इतने बल तुमको मिल रहा है। तब कहे कि प्रहलाद महाराज ने कहा, हे राजन, आप जिस बल के मेरे स्वरूप का जानना चाहते हैं चाह रहे हैं, वही भी आपका सभी आपका बल का भी स्रोत है। निसंदेह समस्त प्रकार के बलों का मूल स्रोत एक ही है, वह न तो केवल आपका या मेरा बल है, अभी तो सबका एकमात्र बल है, उसके बिना किसी को कोई बल नहीं मिल सकता, चाहे चढ़ या चल, उच्च या नीच, ब्रह्मा समेत सारे जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के बल द्वारा नियंत्रित है। प्रहलाद महाराज थे हिरण्यकश्यप के सामने ऐसे ही बोल रहे थे, लेकिन अबोध बालक थे, निष्कपट भाव से उन्हें बोल रहे थे, लेकिन हिरण्य है परम नियंता, इस प्रकार काल रूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इंद्रियों के बल, मन के बल, शरीर के बल तथा इंद्रियों का प्राण है, उनका प्रभाव असीम है, समस्त जीवों में श्रेष्ठ तथा प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता है। वे अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड का सृजन पालन तथा संहार करते हैं। हिरण्यकश्यप सदा ये प्रहलाद प्रहलाद करना शुरू कर दिया है। अरे प्रहलाद, तूने पूजा करता है, इसका ध्यान करता है, उसका स्मरण करता, तुझे वो शक्ति देता होगा, मुझे क्यों शक्ति देगा, मैं मेरे बाहुबल में ही शक्तिमान हूं। राक्षस यही सोचते हैं, वो भगवान में विश्वास नहीं करते, सोचते कि हमारे हमारे अपने बाहुबल में हम सब किया है नहीं? तो बड़ा प्रहलाद महाराज कहे कि हे पिता, आप अपनी आसुरी प्रवृत्ति को त्याग दें, कृपा करके आसुरी स्वभाव को त्याग दें। बड़े नम्रता से प्रहलाद हाथ जोड़कर बोल रहे, आप अपने हृदय में शत्रु मित्र में भेदभाव न लाएं, आप अपने मन को सबके प्रति समभाव बनाएं। इस संसार में अनियंत्रित तथा पथभ्रष्ट मन तथा इंद्रियों के अतिरिक्त कोई और दूसरे शत्रु नहीं है। जब कोई मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को समानता के स्तर पर देखता है, तभी वह भगवान की ठीक से पूजा करने में स्थिति में होता है। मन एव मनुष्याणां कारण बंध मुख्य, मनुष्य का यही बंधन और मरण मुख्य कारण है। प्रहलाद महाराज महाजन है जो नारद जी सुन रहे थे उसको दोहरा रहे, कहे कि पिताजी आपके कोई दूसरा शत्रु नहीं है, यही मन और इंद्रिय ही आपके शत्रु है, मन को संयमित नहीं कर पाए, इसीलिए आप सोचते कि ये सभी को समभाव नहीं देख पा रहे, किसको शत्रु किसको मित्र समझ रहे, ऐसा करना ठीक नहीं है। प्राचीन काल में आप जैसे राक्षस है, ऐसे ही बहुत बड़े बड़े राक्षस और भी आए और सब ऐसे ही गए, एक दिन सभी को मृत्यु कबलित कर लेता है। इसलिए आप शांत होइए, सिचुएशन को ठीक से समझिए। प्रहलाद कह रहे थे किसको, हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु कहा कि अरे तू बहुत बकवास कर रहा है, बहुत प्रहलाद कर रहा है, तुमने क्या सोच रहा है, मेरे से भी ज्यादा इंद्रिय संयमी है तू प्रहलाद। 36,000 साल तक मैंने दो अंगूठा की वर्षा पर खड़ा था, मेरे शरीर को सारा चिट्टी खा गए, सारे रक्त तक सब चाट लिए थे, केवल अस्थि में मैंने खड़ा रहा इतने साल, मेरे समान इंद्रिय संयमी तीनों लोक में कोई नहीं है, ब्रह्मा जी ने इसको स्वीकार किया, और तुम मूर्ख बोलता कि तुम ज्यादा इंद्रिय संयमी हो, डांटने लगा किसको, प्रहलाद को। क्या कि हिरण्यकश्यप ने उत्तर दिया, अरे धूत, तू मेरे महत्व को घटाने का प्रयास कर रहा है, मानो तो मुझसे भी अधिक इंद्रिय समर्थी इंद्रिय संयमी हो, ये अति बुद्धिमानी है, अतः मैं समझ रहा हूं कि तू मेरे हाथ में मरना चाहता है, क्योंकि ऐसी बेसिर पैर की उत्पटांग बात वही करते हैं जो मरणासन्न होते हैं, जो मरने की इच्छा रखते हैं वो ऐसे उल्टे बात करते हैं। तुम किसी के साथ सामने बात कर रहा है, मुझे पता ही नहीं मैं हिरण्यकशिप हूं, ब्रह्मा समेत कोई देवता मेरे सामने आने के लिए हिम्मत नहीं करते, और तू मेरे सामने खड़ा होकर ऐसे जवाब दे रहा है, मेरे से भी ज्यादा इंद्रिय संयमी तुम और किसी को समझ रहा है, ऐसा कहकर अरे अभागे प्रहलाद, तूने सदैव मेरे अतिरिक्त किसी परम पुरुष का वर्णन किया है जो हर एक के ऊपर है, हर एक का नियंता है, जो सर्वव्यापी है, लेकिन वह कहां है, यदि वह सर्वत्र है तो मेरे सामने खंभे में क्यों नहीं है, खंभे में क्यों उपस्थित नहीं है, क्योंकि वो हिरण्यकशिपु देख रहा था प्रहलाद को खंभे को देख रहे थे, सामने जो हिरण्यकशिपु प्रहलाद एक साइड खड़े थे, हिरण्यकशिपु दूसरे साइड बीच में खंभा था, खंभे की तरफ खंभे को देख रहे थे कौन, प्रहलाद। लेकिन आचार्य लोगों ने कहा था कि तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते थे कि वो खंभे के अंदर पहले नृसिंहदेव दर्शन दे रहे थे, किसको, प्रहलाद को साहस दे रहे थे, और नृसिंहदेव को देख रहा था तभी देख रहे थे, डरना नहीं, जानते थे कि भगवान भी जानते थे कि इतना बड़ा घोर झगड़ा होने वाला बाप बेटे में, और कोई बेटा बेटा छोटा है, इतना छोटा लाला है, भगवान ने इसलिए पहले से दर्शन दे रहे थे खंभे में, प्रहलाद को कह रहे कि डरना नहीं, भयभीत नहीं हो रहा, मैं हूं इधर देखो, वही छोटा बच्चा चाहेगा उसके सामने पहलवान आ जाएगा, क्या होगा उसकी हालत? तो पहलवान आएगा, छोटा बच्चा जा रहा है अकेला और वो आंख दिखाएगा, लाल लाल आंख बच्चा को दिखाएगा, क्या करेगा वो? डॉक्टर पेशाब करेगा वो तो बुरा दर्द जाएगा, वहीं गिर जाएगा। लेकिन यदि अपने बाप है साथ में बच्चे के साथ, पिताजी है और जब पिताजी के साथ जा रहा हाथ पकड़ के पिताजी के, तो फिर पहलवान आंख दिखाएगा तो ये भी उसको आंख दिखाएगा बच्चा, क्यों जान रहे मेरे बाप है साथ में, क्या करेगा वो? आते ही मेरे पिताजी भी जाएगा उसके पास। तो प्रहलाद को भी साहस पूरा पूरा मिल गया, क्योंकि नृसिंहदेव उसको दर्शन दे रहे थे कमरे में, नृसिंहदेव को देख रहे थे साक्षात, और नृसिंहदेव उसको आश्वासन दे रहे थे डरना नहीं, मैं हूं इधर रक्षा प्रदान करने के लिए, मैं यहां पर हूं एक खंभे में। तो वो हिरण्य कश्यप बोला, यार खंभा क्यों देख रहा है ये जाना है, क्या सर्वत्र है तो सर्वव्यापी है तो खंभा में क्यों नहीं है, इसमें है ना क्या है? यदि तुम्हारा भगवान सर्वव्यापी है सर्वत्र है तो वह मेरे सामने ये जो खंभे में क्यों उपस्थित नहीं है, है? सर्वत्र अकस्मात स्तंभे न दृश्यते, इसीलिए खंभे में नहीं दिखाई पड़ रहा है, ये सर्वत्र है तो बोल रहा है। ऐसे कही कि हिरण्य कश्यप ने बड़े अहंकार से अंधा हो गया, पागल होकर सिंहासन से उठा, क्योंकि तुम इतना अधिक अनर्गल प्रलाप कर रहे हो प्रहलाद, अब मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारा शीर को छिन्न कर दूंगा और मैं देखूंगा कि तुम्हारा परम आराध्य ईश्वर तुम्हारी रक्षा किस प्रकार करता है, मैं उसे देखना चाहता हूं। कौन बोल रहा है? मैं उसे देखना चाहता हूं, कहां है तुम्हारा वही भगवान मैंने जिसका नाम बार बार तुम कर रहा है विष्णु, जो मेरे भी ऊपर में मेरे से भी श्रेष्ठ है, मेरे भाई को वध किया, मैं इसको ढूंढते ढूंढते थक गया, उसका सिंहासन में भी नहीं था, क्षीरसागर में गया, वो मेरे डर से ही सुसाइड कर लिया था, कहा अभी कहां से आएगा है? तुमने ऐसे ही कह रहा है, अभी देखा मैं इसको देखना चाहता हूं सामने, मेरे सामने आता तो मैं इसको अभी समाप्त करूंगा है? तो ऐसा जो क्रोध तो बार बार कहने लगा है, अतिशय क्रोध के कारण महाबलशाली हिरण्यकशिप ने अपने महाभागवत पुत्र को अत्यंत कटु वचन कहे और उसकी भत्सना की, उसे बारंबार सांप देते हुए हिरण्यकशिप अपने तलवार लेकर अपने राजसी सिंहासन से उठ खड़ा होकर अत्यंत क्रोध के साथ खंभे पर प्रहार किए, मुष्टि गए उठी। देखे क्या करके बच्चे बालक तो जितने गाली देने में कुछ फर्क नहीं पड़ता, खड़ा है ऐसे और वो तो निर्भीक है, हाथ जोड़कर अपने भगवान को देख रहा है खंभे में, वो इतना क्रोधित हुआ हिरण्यकशिप उठकर तरवाल उठा लेकर और आ गए और जो जिस खंभ को प्रहलाद देख रहे थे वो बीच में जो खंभ को आकर क्या लगाया, मुट्ठी लगाया, बहुत जोर से मुट्ठी लगाया। सह विक्रमम पुत्रवध इप्सु ओजस निशम्य निहूत दिम अपूर्वम अद्भुतम अतः सभायम न ददर्श तत्पदम पिबत्रासु ये न सुर आदि जूथपाह। तो वैसे ही जब कोई प्रहार कर रहा था जोर से अपने पुत्र को मारने की इच्छुक हिरण्यकशिपु ने जब उस तरह अपना अद्वितीय शौर्य दिखलाता था, जब एक अद्भुत तब ये मुट्ठी लगा दिया वो खंभे में, तब एक अद्भुत भीषण घोर ध्वनि सुनी जिससे इसके पूर्व उसने कभी भी नहीं सुना था, ऐसा गर्जना हुआ है। इसी ध्वनि को सुनकर अन्य असुर नायक भी भयभीत हो गए, उस सभा में इस ध्वनि के उद्गम की कोई ढूंढ नहीं पाया, सब ढूंढ रहे थे कहां से ध्वनि आया। ऋषिकदेव गर्जना की ना, वो जब ये मुट्ठी लगाया था खंभे में तो गर्जना सुनाई पड़ी, कैसे गर्जना, सिंह कैसे गर्जना करता, किसको आता है? वैसे भौतिक जगत का सिंह नहीं है वो, सिंह की गर्जना कहां तक सुनाई पड़ा, ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक इंद्र चंद्र वरुण सारे देवताओं के लोग तीनों लोक में वो आवाज व्याप्त हो गया, देवता लोग ने भी कंपने लगे, ब्रह्मा जी ने भी क्या हो गया, प्रलय हो जाएगा ना क्या सारा सृष्टि मेरी, सभी भयभीत होने लगे, बहुत जोर से गर्जना की हिरण्यकशिपु ने अपने दास प्रहलाद महाराज के। तभी तो इसी प्रकार ये जब वो सभी लोग ढूंढ रहे थे ध्वनि कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, सभी लोग हिरण्यकशिपु उसके जितने भी अनुचर थे और सभी चारों साइड देख रहे थे कि ये ध्वनि कहां से प्रकट हुआ, सारे देवताओं को भी भय में डाल दिया, सब लोग को ऐसे जो हिरण के विशेष रूप में देख रहा था। तभी ये श्लोक कह रहे सुखदेव गोस्वामी, सत्यं विधातु निज भृत्य भाषितम ध्वनि व्याप्ति च भूतेषु अखिलेषु चात्मन अदृश्यतात् अद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायं न मृगं न मानुष। जिस प्रकार सभी लोग ध्वनि के आवाज को कहां से सोते हैं ढूंढ रहे थे, उसी समय अपने भृत्य प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए। प्रभुपाद लिखते प्रहलाद के अनुवाद कहते प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए और ये भी प्रमाण करने के लिए कि ना हम ने नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्तों की कभी नाश नहीं होता है, है? जो मेरे शरण में आता है अर्जुन को भगवान ने कहे थे गीता में कौनते प्रति जाना ही नमे भक्त्या प्रणश्यति, तो इसको प्रमाण करने के लिए भगवान ने उस खंभे से प्रकट हुए सत्य विधा तुम निज भृत्य भाषित। और ये कहते हैं कि कहा मेरे भगवान रत्न व्याप्तिंच भूतेषु अखिलेषु चात्मन सर्वत्र भगवान विस्तार है, भगवान की स्थिति किसी भी स्थान पर है। ये प्रहलाद ने कहा था किसको? हिरण्यकश्यप, भगवान सर्वव्यापक है सर्वत्र है। इस वचन को प्रहलाद जी वचन को सार्थक करने के लिए है? और उसी खंभे से ही प्रकट हुए दिखाई पड़े भगवान ने प्रकट हुए अद्भुत रूप रूपम अद्भुत अद्भुतम रूपम उद्वहन है अद्भुत रूप लेकर प्रकट हुए। तो न कहां से प्रकट हुए? न स्तंभे खंबायन न मृगंग न मानुषम न सिंह का था न मनुष्य का था, शरीर तो मनुष्य का था और मुख कैसे था? सिंह का था, सिंह के मुख मनुष्य का रूप धारण करते हुए वही सभागृह में हिरण्यकश्यप के सभागृह में खंभे से प्रकट हुए, जिस खंभे को मुट्ठी लगाया कौन? हिरण्यकश्यप से प्रकट हुए भगवान प्रकट। लेकिन भगवान जब प्रकट हुए और तात्पर्य प्रोपन्न कर ये प्रहलाद का भी वचन को भी सत्य ने सत्य प्रमाण किया साथ साथ किसका? ब्रह्मा जी का वचन, दो भक्तों की वचन। ब्रह्मा जी ने कहा था कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि हिरण्यकश्यप मरेगा नहीं, ब्रह्मा जी के सारे सत्य को रक्षा किए सारे वचन को रक्षा किए कौन? भगवान ने, भगवान ने। इसलिए वो कहा था कि दिन में मरेगा नहीं रात में मरेगा, इसलिए कब मारा इसको? प्रकट हुए भगवान और जब प्रकट हो गए थे पहले, लेकिन मारे आगे आएगा तो मारेंगे तो देखिए संध्या तक वेट करेंगे, शाम तक वेट करके फिर उसको दहली के ऊपर लेंगे, पहले तो कुछ खेलवा खेलेंगे ना उसके साथ। आगे श्लोक में कर जैसे कोई सांप किसको पकड़ने गरुड़ जैसे सांप को पकड़ लेता थोड़ा खेलता है खिलता डोलता है इसकी बात उसको मारे तुरंत, बिल्ली कोई चूहा को पकड़ ले थोड़ा कभी कभी तो आधा मार के फिर इसको खेलता है उसमें आनंद आता है। शेर भी सिंह भी कोई शिकार पकड़ लेता तो फिर उसको जान से तुरंत नहीं मारता है, थोड़ा खेलता है उसके साथ। भगवान इस प्रकार जो हिरण्यकश्यप ने जो देखा सामने भगवान को प्रकट हो गए और देखा बोला थोड़ा समय देखा बोला अच्छा ये तो लगता कि वो माया भी है विष्णु, जैसे मेरे भाई को क्या बन के मारा था? स्वर बन के मार दिया था। बड़ा हंसी लगा बोला स्वर बन के उसको मारा था, अभी मेरे सामने ऐसा ही रूप लेके प्रकट हुआ, लगता है कि मुझे मारने के लिए प्लान करे, लेकिन मरे या क्या बिगाड़ सकता, मैं तो अमर बन चुका हूं। किसकी वरदान में है? गदा लेकर तुरंत भगवान तो खड़े थे, गदा लेकर पहला आक्रमण करना शुरू कर दिया। किसको? भगवान को। गदा लेकर गया तो लेकिन भगवान तो इतना जोर से हंस रहे थे और अपने रूप को बढ़ाने लगे कि बहुत इतने बड़े हो गए कि पूरा इनके बाल सब कहा आकाश में बादल सब भाग गए, इनके बाल के नृसिंहदेव के बाल के पर से बादल सब इधर उधर भाग गए, देवता लोग ने एरोप्लेन में जो आकर इनके एरोप्लेन भी कोई कोई एरोप्लेन में नृसिंहदेव के बाल लगा मैंने स्पर्श करके तो छिड़क कर जाकर दूसरे लोक में गिर गया। इतने विशाल कर भयंकर मूर्ति धारण किए नृसिंहदेव, बढ़ गए अपने मूर्ति को बढ़ाया और जोर जोर से हंस रहे थे, इतना जोर से हंसी करते थे हिरण्य कहीं वो कान बंद करा इसको वो आवाज को सुनना नहीं चाहता था, अट्टहास करते थे भगवान। फिर भी ये तो वर्णन आता ही जैसे कोई छोटा सा क्षुद्रक एक पक्षी कोई विशाल अग्नि के दूत उत्स के बीच में घुस जाता है, ऐसे ही हिरण्य कश्यप प्रवेश कर गया, कहां गया दिखाई नहीं पड़ रहा था लेकिन गदा में प्रहार कर रहा था किनको? भगवान को। वो तो कमल के फूल से जैसे हाथी का हाथी को प्रहार करने कमल का फूल लेकर भगवान को क्या फर्क पड़ने पड़ा, लेकिन भगवान ने अपने पूरे ऐसे ही कुछ समय के बाद उसे पकड़ लिया गदा समेत पकड़ लिया गदा के समेत हिरण्यकश्यप पकड़ लिया पकड़ लिया कि थोड़ा सा रखे लेकिन थोड़ा सा फिर इसको निकाल जाने के थोड़ा मौका दिया थोड़ा निकाल गया हाथ से पकड़ लिया पड़े एकदम तो मूर्ति मूर्ति ने छटपटा था लेकिन छोड़ दिए छोड़ दिया इसके हाथ से गदा निकल गया तो छोड़ दिया इसको तो बाहर गया बाहर सोचे कि अरे ये भयभीत हो गया मेरे सोचे में डर गया कौन ये जो नर मैंने नर का शरीर सिंह का मुख लेकर आया डर गया अभी ऐसा सोचकर थोड़ा सा विश्राम किया फिर बात ना मैंने तरवाल पकड़ा है तरवाल लेकर गया फिर दूसरे भगवान थोड़े समय खेले लेकिन जब तक संध्या हो गया ठीक दहली के ऊपर ले गया उसको अपने जंघा के ऊपर शरीर रोक दिए बहुत आसुन बहुत आसान से अपने नाखून से इसको फाड़ डाले इसको उधर को फाड़ दी फाड़ के इसको अंतराणी लेकर लपट लिए देखा था ब्रह्मा जी का वचन को भी रक्षा की ब्रह्मा जी ने जो कहा था कि दिन में नहीं मरेगा रात को नहीं मरेगा ब्रह्मा जी के सृष्टि से किसी प्राणी के हाथ में मरेगा नहीं जितने भी सारे प्रतिश्रुति दिए थे सारे प्रतिश्रुति भगवान ने रक्षा करते हुए उसको मार डाले किसको हिरण्यकशिपु को लेकिन और आचार्य लोग ने कहते विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि प्रकृत में ही वो और भी दोनों का वचन को भी रखा गया, केवल ये दोनों उनके भृत्य नहीं थे, और भी दूसरे भी भृत्य थे। कौन? प्रहलाद और ब्रह्मा जिस प्रकार भृत्य थे, उनके चारों कुमार भी उनके भृत्य थे, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, जिन्होंने इनको अभिशाप दिया था, इनकी वचन को भी रक्षा किए। इन्होंने भी कहे थे कि तीन बार राक्षस बनेंगे, अभी एक बार राक्षस बने और इनको वध करके भगवान ने फिर इनको और दो बार राक्षस बनने के आगे और बनेंगे, कुंभकर्ण ने रावण कुंभकर्ण और शिशुपाल वक्र, लेकिन ये उनको भी वचन को रक्षा किए कि तीन बार जन्म लेंगे और तीन बार इस प्रकार भगवान विष्णु के द्वारा वध होने के बाद फिर ये अपने लोक में वापस आएंगे, भगवान ने इनको मारेंगे। इसलिए उन्होंने कुमारों के वचन को भी रक्षा किया। और हिरण्यकशिपु कौन था? हिरण्यकशिपु भी उनके दास था, वो भी जय था, स्वर्गों के द्वार के द्वारपाल था। इसलिए भगवान ने हिरण्यकशिपु का वचन को भी रक्षा किए। हिरण्यकशिपु जो उसको वरदान मांगा था ब्रह्मा से, वो सारे वचन को रक्षा करके उसको मार डाले। केहू माने केहू ना माने सभी तारा दास, जेहू ना माने अपना गुणे से ही जाए नाश। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कर, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, लेकिन सभी उनके दास है। किसका दास? सभी कृष्ण के दास है, लेकिन सभी दास है। ये लोग मानने वाले थे, ये तो बड़ा ड्रामा हो रहा था, एक्टिंग चल रहा था। अब सभी तो भगवान ने नृसिंहदेव हीरो बने थे, विलियन कौन बना था? जय ने ये हिरण्यकशिपु बना था, ये ड्रामा के राक्षस है, असली राक्षस नहीं है, ड्रामा के राक्षस है। भगवान ने इनको लाकर सब अपने नित्य दासों के साथ में लड़ा करते हैं, भगवान बद्धजीवों के साथ लड़ा नहीं करते। गौरांग महाप्रभु भी संकीर्तन आंदोलन में जो कुछ लड़ाते हैं, गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने छेजाए ब्रजेंद्र सुत पास। तो इसी प्रकार ये लीला भगवान ने संपन्न किए बहुत सुंदर भाव से, ढंग से हमें तो सिखाने के लिए। यदि आप प्रहलाद की तरह भक्ति करोगे तो मेरे धाम में आओगे, और यदि हिरण्यकशिपु की तरफ होगे तो क्या होगा? तुम्हारे विनाश सुनिश्चित है। चलो आप सोच लो किसको फॉलो करना है, हिरण्यकशिपु को या प्रहलाद को? ठीक है, तो बहुत समय हो गया, यहीं समाप्त करते, 10 बज गया ऑलरेडी। तभी शाम को फिर यदि क्लास होगा तो उसमें थोड़ा प्रहलाद की स्तुति, हिरण्य को मैंने कैसे भगवान को शांत कैसे किया गया है, क्रोधित होकर इसको मारने के बाद भी हिरण्यकशिपु और जितने भी इसके हजार लाखों लाखों सन्याय सबको फाड़ के फेंक दिए, लेकिन बहुत शांत नहीं हुए, गर्जना कर रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जैसे तीनों लोग ध्वंस हो जाएगा। उसके बाद स्तुति हुआ, देवता लोग ने स्तुति करेंगे, वो शांत नहीं हो, शांत नहीं हो, प्रहलाद कैसे स्तुति किए शांत कराए, तो फिर भगवान को उग्र नहीं छोड़ना, सब समाप्त करे फिर उनको शांत कराना पड़ेगा ना। ठीक है, हरे कृष्ण, शांत की कथा में आओगे। श्री प्रहलाद नृसिंह भगवान की, श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, निताय गुरुपे मनंदी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।